की गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत करते हैं। कुछ ही दिन के बाद एक बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, सब लोग जानते हैं क्या? जगन्नाथ रथ यात्रा। न केवल भारत में, पूरे विश्व भर में यह प्रचलित है और सब लोग जानते हैं कि आषाढ़ी बीज के दिन जगन्नाथ भगवान अपने घर से, अपने मंदिर से निकलकर संसार के सभी पापी जीवों को दर्शन देने के लिए रास्ते पर आते हैं। तो हमने सोचा कि जगन्नाथ का नाम तो सब लोग ने सुना है, लेकिन इस प्रकार का विचित्र रूप भगवान का लेना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुछ लोग जानते होंगे जगन्नाथ भगवान को, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन ये जगन्नाथ और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण है। लेकिन कृष्ण कैसे जगन्नाथ बने? इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार का रूप कैसे धारण किए, इसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। तो यह चर्चा श्रीमद् भागवतम से यहाँ पर होगी। तो आप सब श्रोताओं को निवेदन है कि यहाँ पर धैर्य से श्रवण करें, अपनी नींद पर काबू रखते हुए, क्योंकि अक्सर इस प्रकार का प्रवचन जब हम सुनते हैं तो तो सबसे पहला दुश्मन हमें परेशान करता है वो है नींद। तो अपने दुश्मन को काबू में रखते हुए धैर्य से श्रवण कीजिए। तो कृपया करके मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मेरे पीछे दोहराइए, देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतन्ति भवसागरे। देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। बोलेंगे,
देव देव जगन्नाथ
देव देव जगन्नाथ
प्रवनर्ति विनाशन
प्रवनर्ति विनाशन
त्राहि मां पुंडरीकाक्ष
त्राहि मां पुंडरीकाक्ष
पतितं भवसागरे
पतितं भवसागरे।
देव देव जगन्नाथ
देव देव जगन्नाथ
भवनर्ति विनाशन
भवनर्ति विनाशन
त्राहि मां
पुंडरीकाक्ष
पतितं भवसागरे।
देवं देव जगन्नाथ
देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति
विनाशना
त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। देव देव जगन्नाथ प्रवनर्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष
माता जी में से कोई
देव देव जगन्नाथ
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सद्रजातम् सहगणरघुनाथान् तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगहर्पये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिष्टिगौरभक्तवृन्द
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमात्मस्मि भूर्तेर्महद्भियः इमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमूष्य पुरुष भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांधये आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे प्रियो जगत करो करुणावतारो वंदे हम अनंत अद्भुतेश्वर्यम् श्रीचैतन्य महाप्रभु निचोऽपि यत् प्रसादात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तक हरे कृष्ण तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे इस कलयुग के प्रारंभ में द्वापर युग के अंत में महाराज परीक्षित को मुनि सम्यक के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला था। श्राप यह था कि 7 दिन के अंदर, आज से ठीक 7 दिन के बाद, तक्षक नाग आकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जब इस भारत भूमि, इस पृथ्वी के सम्राट को यह श्राप मिला, तो महाराज परीक्षित अपने सब कार्य छोड़कर, राजपाट इत्यादि छोड़कर वन में चले गए और वन में परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट हुई। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया। जब महाराज परीक्षित को श्राप लगा, तब परीक्षित महाराज ने सोचा कि अब जीवन के 7 दिन बचे हैं और इस 7 दिन में ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मैं वह तक्षक नाग से बच सकूं या मरने के बाद नरक में जाने से बच सकूं। अरे बोल, यहां पर ध्यान दीजिए, या मरने के बाद गलत जगह पर नरक लोक में न जाओ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज परीक्षित सबको पूछने लगे, मैं क्या करूं क्या करूं, 7 दिन बचे हैं जीवन के। तब कई लोगों ने कहा आपको दान करना चाहिए। तब परीक्षित महाराज को यह उपाय ठीक नहीं लगा, क्योंकि दान करने से पुण्य मिलता है और पुण्य जमा करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन इस जीवन में जितना पुण्य किया है उसका एक बैलेंस बनता है और यह बैलेंस जब खत्म हो जाए तो तब स्वर्ग में भी पहुंचा हुआ व्यक्ति इस पृथ्वी पर गिर जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, जब पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाता है तब स्वर्ग से भी मनुष्य इस पृथ्वी पर गिरता है। इसलिए दान पुण्य करना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब किसी लोग कुछ लोगों ने कहा आप धाम वास करो, वृंदावन मथुरा इत्यादि धाम में जाओ। तो परीक्षित महाराज को यह उपाय भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि गंगा इत्यादि नदी में स्नान करके पापों से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन पाप करने की वासना से मुक्त नहीं हो सकते। और भी कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि आप यज्ञ करो, हवन करो, लेकिन परीक्षित महाराज बहुत बुद्धिमान थे और भगवान के भक्त भी थे, तो उन्होंने सोचा कि द्वापर युग में यज्ञ करने की विधि नहीं है। यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करने की विधि कृत युग में अर्थात सतयुग में थी, द्वापर युग में यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अंत में बहुत ही सुंदर निर्णय किया महाराज परीक्षित ने कि 7 दिन बचा है और यह 7 दिन में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनूंगा। और इस प्रकार की इच्छा करने मात्र से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से मिल गए, भेंट हो गई सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की। और तुरंत यमुना नदी के तट पर सुखदेव गोस्वामी ने अपना व्यास आसन पर बैठे और परीक्षित महाराज उसके सामने बैठे हैं। और उस वक्त पूरे ब्रह्मांड में सबको पता चला कि गंगा नदी के तट पर सुखताल में सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कथा होने वाली है। इस विश्व ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि और सशिष्यात अपने शिष्यों को लेकर वह कथा सुनने के लिए पहुंच गए। और इस कथा में इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े पत्री ऋषि, देवल, चोन, भृगु इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि उस कथा में बैठे थे। यहाँ तक स्वर्ग के देवता भी उस कथा में आकर बैठे थे। और आश्चर्य की बात यह है कि कथा सुनाने वाले सुखदेव गोस्वामी हैं और सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव भी उस कथा में नीचे बैठकर अपने शिष्य से ये कथा सुन रहे हैं। कल्पना कीजिए कथा सुनने की कितनी बड़ी महात्मा है, कितनी बड़ी महिमा है कथा सुनने की, कि अपना शिष्य भी अगर प्रवचन कर रहा हो उसे भी सुन लेना चाहिए। यह बात छोड़िए, सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव और व्यासदेव के गुरु नारद मुनि भी उस कथा सुनने के लिए वहां पर बैठे थे। सभी देवी देवतागण उस कथा में आकर बैठे थे सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करने के लिए। क्योंकि जो बुद्धिमान है वह जानते हैं कि कथा सुनने से ही जीवन में सुख मिल सकता है और भगवत प्राप्ति हो सकती है। और जीवन में कितने भी उपाय किया जाए वास्तव में सुख नहीं मिलता। तो बैठे परीक्षित महाराज ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि हे परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके आप हमें यह बताइए कि जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत कम समय बचा हो, बहुत थोड़े समय के बाद जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आप मुझे बताओ। अब यहां पर थोड़ी बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। क्या ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने अपने लिए पूछा था? कथा शुरू होने से पहले अनुमोदन में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया था कि हे परीक्षित, तुम 7 दिन 7 रात तक कथा सुनो और यह कथा सुनने से वह तक्षक नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और तुम इसी शरीर से भगवान के धाम में चले जाओगे। फिर भी परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिसके जीवन में कम समय रह गया हो, क्योंकि 7 दिन में मरने वाले थे, तो ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को जो मरने में ही तुला है, मरने वाला ही है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? तो हम लोग तो सोचते हैं यह तो परीक्षित महाराज के लिए है, वो 7 दिन में मरने वाले थे इसलिए उन्होंने यह प्रश्न पूछा, हमें इसकी क्या जरूरत है। लेकिन गौर से सुनिए कि परीक्षित महाराज के जीवन में तो निश्चित था कि वह 7 दिन के बाद मरेंगे। परीक्षित महाराज 7 दिन के बाद मरने वाले थे। हमारे जीवन में क्या निश्चित है? हम 7 घंटे के बाद भी मर सकते हैं और 7 मिनट के बाद भी मर सकते हैं और 7 सेकंड के बाद भी किसी को यहां पर हार्ट अटैक आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। परीक्षित महाराज के जीवन में निश्चित था कि वह 7 दिन के पहले नहीं मरेंगे, 7 दिन के बाद ही मरेंगे। लेकिन हमारे जीवन में कौन सा निश्चित है, हम कभी मरेंगे? कोई निश्चित नहीं। वास्तव में यह प्रश्न परीक्षित महाराज के लिए नहीं, हमारे लिए पूछा गया है कि हम जैसे म्रियमाण व्यक्ति को जो कभी भी मर सकता है, इसलिए हम जहां पर रहते हैं, हम जिस लोक में रहते हैं, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है और किसी भी लोक को मृत्यु लोक नहीं कहा गया। मरते तो सभी लोक में, सब जीव मरते, ब्रह्म लोक आभवन या ब्रह्म पुनरावर्ती नो अर्जुन ब्रह्म लोक तक सारे जीव मरते रहते हैं, स्वर्ग में भी देवतागण मरते हैं, तो इस पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक क्यों कहा गया? पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक इसलिए कहा गया क्योंकि इस पृथ्वी लोक में मरने की कोई डेट और समय फिक्स नहीं है। इस पृथ्वी में हम जहां पर रहते हैं यहां पर जीव कभी भी और किसी भी समय किसी भी दिन मर सकता है, कोई निश्चित नहीं। ट्रेन से जा रहे हो, बॉम्ब फूट जाए। घर से आराम से सो रहे हो तो धरती कंप हो जाए, या पानी की बहाड़ आ जाए, आजकल बुखार निकला है, डेंगू इत्यादि, दो तीन दिन में मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कैंसर हो जाए, अच्छे अच्छे व्यक्ति को पता चलता है कैंसर है, और दो महीने में जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है वैसे देखते ही देखते कैंसर वाला व्यक्ति हमारे आंख के सामने मर जाता है। एक दिन बहुत सुंदर तरह भोग कर रहा था, चल फिर घूम रहा था, हमारे साथ खेल रहा था, लेकिन हमारे सामने हम देखते हुए मर जाते हैं। तो मरना लगा है सबके जीवन में और सब लोग प्रति क्षण प्रति मिनट मर रहे हैं। हम अक्सर जब हमारी जन्म तिथि आती है तो हैप्पी बर्थडे हम मनाते हैं, तो क्या यह हैप्पी बर्थडे खुशी की बात है? अरे भाई, हमारे जीवन से एक साल कम हो गए तो बड़े दुख की बात है। समय जा रहा है, समय रुक नहीं रहा है। तो तात्पर्य यह है कि यह जो प्रश्न है परीक्षित महाराज का, यह हमारे लिए है। हम म्रियमाण है और कभी भी किसी भी समय हम मर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नरक में न जाए और भगवान की प्राप्ति हो तो क्या करना चाहिए? तब तुरंत सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च इच्छताम अभयम। अगर मृत्यु से बचना चाहते हो तो तस्मात, तस्मात का अर्थ होता है इसलिए है परीक्षित। अगर आप बचना चाहते हो तस्मात इसलिए है भारत, भारत का अर्थ होता है परीक्षित सर्वात्मा, सर्वात्मा अर्थात भगवान कृष्ण जो सभी व्यक्ति के हृदय में है परमात्मा के रूप में, तो वह सर्वात्मा वह कृष्ण का भजन करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च उस कृष्ण की कथा सुननी चाहिए और कीर्तितव्यश्च उसके नाम का कीर्तन करना चाहिए। अगर म्रियमाण व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करे, कथा श्रवण करे और अपने मुख से भगवान का नाम का जप करे, तो इच्छताम अभयम वो जब चाहे तब मृत्यु उसके हाथ में है। अरे हाथ की बात छोड़िए, मृत्यु हाथ जुड़कर खड़ी रह जाती है ऐसे भक्त के जीवन में। जो भजन करता है तो कहा गया है शास्त्र में, धर्म अर्थ काम मोक्ष यह तो प्रतीक्षा करते हैं कब ये भक्त हमारे पास आए और धन ले। अभी जो भजन नहीं करते वो पैसा प्राप्त करने के लिए कमाने के लिए बहुत पसीने बहाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं बनता है। लेकिन भक्ति स्तवई स्थिर भगवान यदिस्या देवन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति तिलांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। ये जो धर्म अर्थ काम समय की प्रतीक्षा करते है कभी भक्त हमारे पास आए और धन ले हमारा। और मुक्ति तिलांजलि, तिलांजलि का अर्थ होता है हाथ जोड़कर उस भक्त के जीवन में खड़ी रह जाती है कि तुम्हें जो चाहिए वो मुक्ति ले सकते हो, लेकिन भक्त उस मुक्ति को भी ठोकर मार देता है कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर मैं आपकी भक्ति कर सकूं, भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर आपकी इस प्रकार की कथा सुन सकूं, आपका नाम ले सकूं और आपके धाम में आ जाऊं, मुझे यह चाहिए, मुक्ति फुक्ति मुझे नहीं चाहिए। तो हे परीक्षित, म्रियमाण व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की लीला का श्रवण करे और कीर्तन करे। तब सुखदेव गोस्वामी ने कथा प्रारंभ की और बहुत ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से शुरू हुआ है। सबसे पहले सृष्टि का वर्णन किया, किस प्रकार भगवान कृष्ण अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, तीन प्रकार के विष्णु, कर्णदक्षाही, गरुदक्षाही, शिरोदक्षाही, और उसमें से किस प्रकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि का सर्जन किया और सभी लोग किस प्रकार बने, ये सारा वर्णन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में है। और तीसरे स्कंद में ध्रुव महाराज, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद इत्यादि की कथा है। और चौथे पांचवें स्कंद में जड़ भरत, भगवान ऋषभदेव इत्यादि की कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज ने श्रवण की। तब सुखदेव गोस्वामी ने जितने भी लोक लोकांतर है इसका वर्णन किया श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में, और साथ साथ में नरक लोक का भी वर्णन किया। और बाद में छठे स्कंद में अजामिल की कथा और कई सारी अलग अलग कथाएं सुनाई। तो यह सब सुनते 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 परीक्षित महाराज के जीवन के पांच दिन बीत गए और कृष्ण कथा अभी तक नहीं सुनी। तो पांच दिन और पांच रात बीत गए और छठे दिन सुबह जब सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ करे उसके पहले परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, अपनी जिज्ञासा रखी। परीक्षित महाराज ने कहा, हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने बहुत ही सुंदर कथा सोमवंश और सूर्यवंश की कथा सुनाई और उसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं का चरित्र सुनाया, लेकिन अब मैं यह सब कथाएं सुनना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे जीवन में अब दो दिन बचे हैं और अब इस दो दिन में मैं भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला का वर्णन सुनना चाहता हूं। तो कृपया करके भगवंत, आप हमें भगवान श्री कृष्ण ने जिसने यदु वंश में जन्म लिया है और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और किस प्रकार बहुत सारे प्रश्न पूछे, किस प्रकार बलदेव जी एक है लेकिन एक बलदेव दो जन के गर्भ में कैसे रहे, देवकी के गर्भ में भी बलदेव जी रहे और रोहिणी के गर्भ में ये एक व्यक्ति दो के गर्भ में कैसे जा सकता है। आज का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी यह कार्य नहीं कर सकता कि एक बच्चे को दो के गर्भ में डाल दे। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न हो रहा है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बलदेव जी प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला का वर्णन कृपया करके आप हमें सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित, तुम्हें कथा सुने पांच दिन और पांच रात बीत गए हैं और तुम राजा रहे हो क्योंकि राजा विषय और भोग के अभ्यस्त रहते हैं। राजा जो होते हैं निरंतर खाने और पीने में और विषय भोग करने में पड़े रहते हैं। तो तुम राजा रहे हो और विषय भोग बहुत ही जमकर किए हो, तो मैं देख रहा हूं पांच दिन और पांच रात से तुमने कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया और सोए भी नहीं। तब थोड़ी देर के लिए तुम आराम कर लो और थोड़ा बहुत खा लो या पानी पी लो। परीक्षा ले रहे सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित क्या कर रहा है। अगर आपको यहां पर कहा जाए कि थोड़ी देर के लिए आराम ले लीजिए और खिचड़ी प्रसाद खा लीजिए, बाद में सुनेंगे तो कहेंगे अरे बोल प्रभु जी बहुत अच्छी बात है। आधा घंटा भी नहीं हुआ लेकिन परीक्षित महाराज के जीवन के पांच दिन पांच रात बीत गए थे, एक झपकी भी नहीं लगाई थी परीक्षित महाराज ने, और ऐसी स्थिति में पूछा जा रहा है कि थोड़ा बहुत खा लो या पी लो या थोड़ा आराम कर लो। ऐसे इतना बड़ा गुरु अगर हमें कहे कि आराम कर लो तो हम हो गए तो अवश्य कर लेते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवंत, हे सुखदेव गोस्वामी, यह छूत, यह भूख और प्यास मुझे बाधित नहीं कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपको भूख नहीं लगी है, और जब मनुष्य को भूख लगती है तब उसका एक भी कार्य ठीक से नहीं होता है, ये तो हमारा अनुभव है। कितना भी सुंदर कार्य क्यों ना हो लेकिन भूख लग जाए तो उस कार्य में मन नहीं लगता है, और तुम 5 दिन और 5 रात से कुछ खाए नहीं हो, पिए नहीं हो, भूखे हो, तो क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? परीक्षित महाराज ने कहा नहीं लगी है भूख। सुधीर गोस्वामी कहते ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जब जंगल में जा रहे थे, जब राजा थे जंगल में जा रहे थे, और आधे दिन में तुम्हें भूख और प्यास लग गई, और उस आधे दिन की भूख और प्यास के कारण तुमने इतने बड़े ऋषि का अपराध कर दिया। आधे दिन तक ही भूखे थे परीक्षित महाराज जब सम्यक मुनि का अपराध किया, उसके गले पे सर्प डाला। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आधे दिन में तुम प्यासे और भूखे हो गए और इतना बड़ा अपराध किया कि 7 दिन में मरने का श्राप मिला, और यहां पर तुम 5 दिन और 5 रात से कुछ खाए नहीं हो, पिए नहीं हो, फिर भी तुम बता रहे हो कि मैं भूखा नहीं हूं और प्यासा नहीं हूं। ऐसी कौन सी चीज तुम्हें मिल रही है कि जिसके कारण तुम्हें भूख भी नहीं लग रही और प्यास भी लग नहीं रही? तब महाराज परीक्षित कहते हैं पीवम त्वाम मुखाम भुजम अच्युतम हरि कथामृतम। ऐ सुखदेव गोस्वामी, मैं आपके मुख से निकलता हुआ जर्जर जर्जर रूपी बहता हुआ कृष्ण कथा सुन रहा हूं, और जिस व्यक्ति को कृष्ण कथा अमृत का आस्वादन हो रहा हो, क्या उसे भूख लग सकती है? जिसे अमृत मिल रहा हो वह क्या पानी और रोटी के पीछे भागेगा? कभी नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, मुझे अमृत मिल रहा है, वो भी कौन सा अमृत? वह स्वर्ग में तुच्छ देवताओं के पास से वह अमृत नहीं, क्योंकि वह अमृत पीकर भी मरना पड़ता है, लेकिन आप जो हमें अमृत पिला रहे हो, जो कृष्ण कथा रूपी अमृत आप जो दे रहे हो, उसका पान मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे भूख भी नहीं है और प्यास भी नहीं है, आप सुनाइए। और इसके अनुमोदन में परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी सुंदर कथा, भगवान की कथा अमृत बह रही हो और उस बहती नदी में स्नान न करे और आचमन न करे? कौनु शुत्वा सकृत ब्रह्मन उत्तम श्लोक यत कथा वीरमेत विशेषज्ञ विषण काम मार्गणे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार की सुंदर कथा से विराम ले लेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार की कथा में अपना घर बार छोड़कर आ नहीं जाएगा? अगर कोई इस कथा को सुनता नहीं है तो ऐसे दो ही व्यक्ति हो सकते हैं। तो कौन? तो परीक्षित महाराज कहते कसाई। अगर कोई कसाई है तो कसाई व्यक्ति इस प्रवचन में आकर सुन नहीं सकता। और दूसरा आत्मघाती, जिसे अपनी आत्मा का ही हनन करना है, जिसे अपने आप को नरक में ले जाना है, ऐसा व्यक्ति इस कथा में नहीं आ सकता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आप सुनाइए, आप सुनाते रहिए, क्योंकि सावाक यात से गुणान गुणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च, क्योंकि वह वाणी वाणी है जो भगवान का गुणानुवाद करती है। सा वाक यात से गुणान गुणीते, और करो कर का होता है हाथ, करो च तत्कर्म करो मनश्च, वह हाथ हाथ है जो भगवान के सामने झुकते हैं, वाणी वाणी है जो भगवान का गुणानुवाद करती है, और वह मन मन है जो भगवान का चिंतन करता है। स्मरेत विषंतम स्थिर जंगमेशु और शुणोति तत्पुण्य कथास कर्ण, और वह कान कान है जो भगवान की सुंदर कथा सुनने में लगते हैं। बाकी संसार की गाली और ये धंधा ये बिजनेस ये वो सुनने में कान धन्य नहीं है, भगवान की कथा जो कान सुनता है वह कान धन्य है, और वह सिर धन्य है, वह सिर है जो भगवान और गुरु के चरणों में झुकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जो सिर कटी संबर तुला जोन नमत हरि गुरु पद मूला। जो सिर हरि और गुरु के चरण में झुकता नहीं है वह सिर तो कट जाए तो अच्छा है, ऐसे सिर को काट देना चाहिए जो गुरु और भगवान के चरण में झुकता नहीं है, तो वह सिर धन्य है, वह सिर है जो भगवान के चरणों में झुकता है। इसलिए है सुखदेव गोस्वामी मैं मेरी सारी इंद्रियां आपकी कथा सुनाने में लगाया हूं, कृपया करके आप सुनाते रहिए और आप भगवान की विशुद्ध कथा का वर्णन कीजिए। प्रश्न यह भी होता है कि वास्तव में सार यह है कि भगवान की शुद्ध कथा सुने, भगवान श्री कृष्ण की लीला सुने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाने से पहले 5 दिन और 5 रात सुखदेव गोस्वामी ने ये राजा और वो राजा के वर्णन में क्यों निकाल दिया? क्योंकि जब तक जीव सिद्धांत को ठीक से समझ नहीं लेता तब तक यह कृष्ण की विशुद्ध लीला को नहीं समझ पाता है। इसलिए हम इस प्रकार का प्रवचन रोज नहीं करते हैं, सालों में एक बार या महीने में एक बार करते हैं। तो आप सब वास्तव में भाग्यशाली हो जो आगे का कुछ नहीं सुना है और डायरेक्ट रसास्वादन, डायरेक्ट अमृत का पान कर रहे हो। लेकिन जो सिद्धांत को जाने बिना इसे सुनते हैं तो इसमें आनंद नहीं है और इसका अपराध भी कर सकते हैं। तो खैर, पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे सुनना चाहिए। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज के कहने पर सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला कथा कहने का प्रारंभ किया और द्वापर युग की शुरुआत का वर्णन करते हुए किस प्रकार इस पृथ्वी पर अलग अलग असुरों के पाप से, अत्याचार से पृथ्वी भारी हो गई, पाप बढ़ गया, पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को लेकर शिव सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने कहा कि कृष्ण यह सब जानते हैं और बहुत ही शीघ्र कृष्ण मथुरा में देवकी के गर्भ से और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और ठीक उसी प्रकार हुआ, कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिए और जन्म लेते ही गोकुल पहुँचा दिया गया और गोकुल में बहुत बड़ा जन्म उत्सव हुआ। नंद गहरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, बहुत ही सुंदर जन्मोत्सव। और कृष्ण का जन्म होते ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीता तो तीसरे ही दिन कंस ने बहुत बड़ी असुरनी को, बहुत बड़ी राक्षसी को भेजा, जो राक्षसी एक गोपी का रूप बना कर आई थी जिसका नाम था पूतना। तो 3 दिन के बालक ने 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना का वध किया। मानो यहाँ पर पूतना का अगर सिर है तो गोरेगांव में उसका पग होगा। तो इतनी बड़ी पूतना का 3 दिन के बालक ने वध किया। तो यह केवल भगवान ही कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो इसमें यहाँ पर बैठे वाले किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि 3 ही दिन में बता दिया कि मैं भगवान हूं। और जो बुद्धिमान है यह जान लेते हैं कि इतने से कार्य से जान लेना चाहिए कि यह भगवान है। और आगे चलकर तृणावर्त, अघासुर, बकासुर का वध किया। लेकिन हम यह मारने और काटने की लीला नहीं कहेंगे, वह तो बहुत चलती रहती है। और हम यह गोप सखाओं की भी लीला नहीं कहेंगे, साख्य भाव भी बहुत हम सुनते रहते हैं। आज हम जो सुनने वाले हैं यह माधुर्य भाव है और यह सबसे उच्च भाव है। अब सबकी स्थिति, हमारी स्थिति भी नहीं है कि हम इसे बोले और हम समझ सके। और वास्तव में यह माधुर्य भाव को हमें कोई योग्यता नहीं है, हमें कोई शक्ति नहीं है कि हम इसे समझ सके। लेकिन गुरु की कृपा से, प्रेरणा से हम यहाँ पर उसी के शब्द दोहराते हैं। जो कुछ मन में स्मरण रहता है वह आपको यहाँ पर पिरसते हैं। तो माधुर्य लीला अद्भुत, भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं माधुर्य लीला का। और बहुत ही संबंध इस लीला का, इसका संबंध इसके साथ है, समझ लीजिए। कृष्ण का संबंध कैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के साथ है, कैसे ऐसा स्वरूप ऐसा बन गया, तो यह हम प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, हम भगवान नहीं कहेंगे, कृष्ण जो है करीबन 4 या 5 साल के हो गए हैं और बछड़े चराने की अनुमति मिल गई है। वास्तव में कृष्ण को बछड़ा चराने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी। गोकुल के ब्रजवासी अनुमति नहीं देते थे कि तुम जाओ बछड़ा चरा सकते हो। कृष्ण को प्रार्थना करके अनुमति लेनी पड़ती थी, क्या मैं बछड़ा चराने को जा सकता हूँ? देखिए, यही लीला है भगवान की, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाते हैं। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं और 14 लोक से भरा हुआ एक ब्रह्मांड ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को भगवान कृष्ण चलाते हैं या चराते हैं, ऐसे कृष्ण को वृंदावन में गोकुल में आकर गैया चराने के लिए, और गैया भी नहीं बछड़े चराने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। ये है लीला कृष्ण की। वास्तव में मनुष्य रूप में है इसलिए मर्यादा भी थोड़ी बहुत रखा करते हैं। तो अनुमति मिली गोपो सखाओ के द्वारा, तो बछड़ा चराने लगे। तो किसी ग्वाल के द्वारा या किसी के द्वारा कृष्ण को पता चला कि बाजू के गांव में बरसाना में बरसाना के राजा वृषभानु के घर पे एक पुत्री का जन्म हुआ है और बहुत ही सुंदर वह लड़की है और हजारों हजारों लक्ष्मी उस वृषभानु की लड़की के घर पे पानी भरती है। बहुत ही सुंदर उसका रूप है, बहुत ही सुंदर वाणी है, बहुत ही सुंदर गुण है, बहुत बहुत सुना कृष्ण ने। तो कृष्ण ने सोचा ऐसा है तो अब तो मिलना होगा। तो कृष्ण ने अब अपना गैया चराने का रूट बदल दिया। प्रतिदिन गैया चराने के लिए दक्षिण की ओर जाते थे, अब कभी कभी अब यही आशा से कि हम उस गांव में बरसाना के जंगल में जाएंगे गैया चराने के लिए, शायद उस देवी का दर्शन हो जाए। तो उस वक्त राधा रानी की उम्र करीबन 8 साल की थी। वृषभानु की जो लड़की थी उसका नाम था राधा, राधा के बिना श्याम आधा। राधा राधा जपत ही भव बाधा मिट जाए। वास्तव में हमारे जीवन की में बहुत बाधा है, लेकिन अगर यह बाधा मिटाना चाहते हैं तो एक ही नाम है, वो है राधा। तो ऐसी राधा वृषभानु के घर पे पल रही थी, बड़ी हो रही थी और बड़ी होते होते 8 साल की हो गई थी करीबन। और तब मान लो कृष्ण 5-6 साल के होंगे, छोटे थे राधा रानी से। तो यही आशा से बरसाना के पूर्व के जंगल में जाते थे और गैया चराते थे, शायद उस देवी का दर्शन हो जाए। तो राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते कभी कभी बरसाना के पूर्व की ओर उस जंगल में खेलने के लिए आ जाया करती थी। तो एक दिन की बात, राधा रानी अपने सखियों के साथ उस बरसाना के पूर्व के जंगल में खेलने आई है और कृष्ण उस दिन कृष्ण के साथ ग्वाल सखा ग्वाल बाल नहीं थे, उस दिन अकेले गए गैया चराने के लिए। तो अकेले गए तो उन्होंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियों का झुंड वहां पर कुछ खेल रहा है। तो कृष्ण छिप कर देख रहे थे ये सब क्या कर रहे हैं, और सारी लड़कियां राधा रानी और सब गोपियां उसकी सखियां वहां पर लुका छुपी का खेल खेल रही थी, जिसे आंख मिचौनी कहते हैं। तो वह झुंड में बहुत ही सुंदर लड़की थी, कृष्ण ने देखा और देखते ही रह गए। दूर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन इतनी सुंदरता थी, दूर से पता चल गया कि इस झुंड में राधा है। तो कृष्ण छुप कर देख रहे थे। तो वहां पर सब लुका छुपी का खेल, खेल का नियम इस प्रकार का था कि जिस पर क्या कहेंगे, एक जिस हम चोर पुलिस हमारी भाषा में कहते हैं, बाकी के जितने भी है सब चोर है और एक पुलिस रहता है। तो एक व्यक्ति सब सखियों को ढूंढेगी, तो जो ढूंढने वाली उसके आंखों में पट्टी बांधी जाती थी और 1, 2, 3, 4, 100 गिनने पर सारी सखियां अपने अपने कुंज में जाकर, कुंज का अर्थ होता है जिसे जंगल होता है और उस जंगल में आजू बाजू में कुछ ना दिखे ऐसी झाड़ी होती है, उस झाड़ी को कुंज कहते हैं। तो सब सखियां कुंज में छुप जाती थी और 100 गिनने के बाद जो आंख में पट्टी बांधने वाली जो सखी होती थी वो सबको ढूंढती थी, अगर कोई पकड़ में आ जाए तो जोर से ताली बजती थी और ताली बजाकर सब लोग एकत्रित होते थे और जो पकड़ा गया अब उसके आंखों पे पट्टी बंधेगी। इस प्रकार का खेल वहां पर हो रहा था। तो कृष्ण ने देखा कि इस प्रकार खेल हो रहा है और जो बहुत ही सुंदर लड़की है वो एक ही कुंज में, उसका सेपरेट कुंज होगा शायद, वहां पर जाती है छिपने के लिए। तो इस बार ताली बजी और सारी सखियां एकत्रित हो गई। जब एकत्रित हुई तो कृष्ण जहां पर राधा जिस कुंड में छिपने के लिए जाती थी वहां पर पहले से जाकर छिप गए। जब अब आंख पर पट्टी बंधेगी तो राधा यहां पर आएगी और मैं उसे देखूंगा। तो अब किसी सखी के ऊपर आंख पर पट्टी बांधी और 1 2 3 4 100 तक गिनने लगी और सब सखी अपने अपने कुंजों में गई और राधा अपने कुंज में आई। और आकर जब देखा राधा ने तो एक बहुत ही छोटा सा बालक उस कुंज में छिप कर बैठा था। और कृष्ण ने राधा को बहुत ही नजदीक से देखा। तो कृष्ण ने जब राधा का जीवन में पहली बार दर्शन किया तो देखते ही मूर्छित हो गए। करोड़ों करोड़ों कामदेव को मूर्छित करने वाले राधा को देखकर मूर्छित हो गए। अब कृष्ण की सुंदरता की क्या बात की जाए। कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण का नाम ही, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सुंदरता। कृषि भूवाचक इति कृष्ण, जिसके मुख से जिसके शरीर से सुंदरता और आनंद निकलता रहे, इसका नाम है कृष्ण, जो सर्वाकर्षक ऑल एट्रेक्टिव है। और ऐसे कृष्ण मूर्छित होकर गिर गए। कृष्ण की सुंदरता पर बड़े बड़े भक्तों ने बहुत कुछ लिखा है। देखिए इस 84 लाख की योनि है, सारी योनियों में सबसे अच्छी सुंदरता है मनुष्य की, सबसे अच्छे से अच्छे रूप है तो मनुष्य का। और इस मनुष्य से करोड़ों करोड़ों गुना अच्छा, क्षमा कीजिए, अच्छी सुंदरता देवताओं की होती है। और उस देवताओं से भी करोड़ों करोड़ों गुना सुंदरता कामदेव में होती है। और कामदेव की से भी करोड़ों करोड़ों गुना, हजारों गुना सुंदरता कृष्ण में है। ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव कृष्ण को देखकर मर जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषोत्तम हम भजामी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे गोविंद, हे कृष्ण, आपको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव मर जाते हैं। तो कामदेव का अर्थ जानते हो, इस संसार में जितनी भी सुंदरता है, जैसे हीरो हीरोइन आजकल जो करिश्मा कपूर है, करीना कपूर है, सबको ले लीजिए और सबकी सुंदरता को एकत्रित किया जाए तो मान लो एक कामदेव भी नहीं होगा। और ऐसे हजारों हजारों करोड़ों कामदेव कृष्ण पर मरते हैं। तो ऐसे सुंदरता वाले, इतनी सुंदरता कृष्ण में। भगवान के बहुत ही सुंदर कृष्ण के भक्त हुए जिसका नाम है सूरदास जी। तो सूरदास जी ने कृष्ण की सुंदरता के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। तो मैं आपको एक पद सुना देता हूं, बहुत ही सुंदर सूरदास जी ने लिखा है कि कृष्ण का जब जन्म हुआ तो कृष्ण की सुंदरता को देखकर जितनी भी उपमाएं थी, उपमाकार जानते हैं, उपमाकार होता है, मान लीजिए आज किसी की उपमा देनी है तो ये लड़का बहुत ही सुंदर है, कितना सुंदर है, तो कहते इसका इसका जो मुख का जो तेज है चंद्रमा की तरह है, तो ये चंद्रमा जो है वो उपमा हुई। तो कृष्ण की हाथ की जो उपमा है कर कमल के साथ देते हैं, कर का अर्थ होता है हाथ और कमल। तो उपमाएं जो है, जब कृष्ण का जन्म हुआ, जब इस संसार में आए तो सारी उपमा भाग गई। कह रहे बाप रे बाप, अब ये हम उपमा को भी लज्जित करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, अब हमारा क्या काम है यहाँ पर। सारी उपमाएं पृथ्वी पर थी, सरदार जी अपना भाव प्रकट करते हैं कि सारी उपमाएं इस पृथ्वी पर थी, लेकिन जब कृष्ण आए तब सारी उपमा रफु चक्र हो गई। बहुत ही सुंदर कहते हैं, उपमा हरि तनु दे खिल जानी, उपमा हरि तनु दे खिल जानी। उपमा ने जब हरि को देखा, कृष्ण को देखा, तो वह लज्जित हो गई। और लज्जित होकर को जल में को बननी रही दूरी, को गगन समानी। कुछ उपमाएं जल में चली गई, जल में जाकर छिप गई, और कुछ उपमाएं आकाश में चली गई, और कुछ उपमाएं जंगल में चली गई। को जल में को बननी रही, कुछ वन में चली गई और कुछ गगन में समानी। तो कहते मुख निरखत सखी गयो अंबर को। अब कृष्ण का जो मुख है वह चंद्रमा के साथ इसकी उपमा देते हैं। तो कृष्ण का जब जन्म हुआ तब चंद्रमा को लगा कि मैं क्या हूं कृष्ण के सामने, और इस संसार के लोग कृष्ण को चंद्र जैसा इसका मुख है, चंद्र के इस कृष्ण की उपमा हमारे साथ करते हैं, हमारा क्या स्थान है कृष्ण के सामने। लज्जित हो गई चंद्रमा, लज्जित हो गए, और लज्जित होकर मुख निरखत शशि गयो अंबर को। तो चंद्रमा पहले यहां पर था, लेकिन जब कृष्ण को देखा तब अंबर वो आकाश में चला गया, अब हमारा कोई काम नहीं है, टाटा बाय बाय। तो मुख निरखत शशि गयो अंबर को, तड़िन दसन छवि हैरी। और जब बिजली जो आकाश में होती है वह भी यहां पर थी, लेकिन जब कृष्ण के दांत देखे, अरे बाप रे बाप, इसके दांत तो बहुत ही सुंदर चमक रहे हैं, जितनी बिजली भी नहीं चमकती इतने इस कृष्ण के दांत चमक रहे हैं। तो तुरंत वह बिजली कृष्ण के दांत को देखकर आकाश में चली गई। इसलिए चंद्रमा और बिजली हम आकाश में देखते हैं, दर्शन करते हैं। और कहते हैं, मीन कमल कर चरण नयन, डर जल में कियो बसेरी। मछली ने जब देखा कृष्ण की इतनी सुंदर आंख है, कभी भी किसी भी व्यक्ति की आंख की उपमा मछली की आंख के साथ दी जाती है, ज्यादा करके कृष्ण की। तो मछली ने देखा इतनी सुंदर आंख कृष्ण की है, हमारी क्या जरूरत है इस जमीन पर। इसलिए मछली दौड़कर पानी में चली गई, छिप गई पानी में। तो वास्तव में एक भाव है ऐसा, वास्तविक ऐसा होता नहीं है कि मछली पृथ्वी पर रहती या चंद्र यहाँ पर, लेकिन भक्त का भाव होता है। ये सत्य बात है, मछली पानी में रहती, चंद्र, लेकिन ये कितना अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं, जब कृष्ण को देखकर ये सब चले गए। तो इस प्रकार का भाव हमें भी प्रकट करना चाहिए। तो मछली ने जब देखा इतनी सुंदर आंख को कृष्ण की, तो वो पानी में चली गई। और कमल, कमल ने जब देखा कृष्ण के चरण को, तो सोचने लगा कि अब तो कृष्ण की उपमा हमारे साथ देंगे, कर कमल चरण कमल। तो कमल दौड़कर पानी में चला गया। तो कमल और मछली दोनों पानी में चले गए। और भुजा देखी अहिराज लजाने, विवरणी पेठे भाई। ज्यादा करके हाथ की उपमा अहिराज, सर्पों के राजा अजगर के साथ दी जाती है। तो अजगर ने, सर्पों ने जब देखा कि कृष्ण के इतने सुंदर हाथ हैं गोल मटोल, तो सारे सर्प सारे अजगर बिल में छिप गए, पृथ्वी में बिल बनाकर छिप गए उसमें, कि अब हमारा कोई काम नहीं है। और कटी निरखत के हरि डर मानियो, बंद बन रहे दुहाई। और कृष्ण की बहुत पतली कमर है, छाती चौड़ी है और कमर पतली है, तो अक्सर कमर की उपमा शेर के साथ की जाती है, सिंह के साथ, क्योंकि सिंह की कमर बहुत पतली होती है और ये भाग चौड़ा होता है। तो जब शेर ने, सिंह ने देखा कि कृष्ण की इतनी सुंदर कमर है, तो तुरंत जंगल में जाकर घुस गया। इसलिए कभी भी गांव में नहीं आता है, बंबई में या किसी रोड पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कमर देख ली उसने। बहुत ही सुंदर भाव सूरदास जी लिख रहे हैं। और गारी देही कबिनी के बरनत, की अंग प्रतत देत। और सारी उपमाएं, जितने भी उपमाएं कवियों को गाली देती रहती हैं, क्योंकि ये सब बात कवि ही कहते हैं, कवि लोग ही इस प्रकार की बात, इस प्रकार की उपमा दिया करते हैं। तो सारी उपमाएं कवियों को गाली देती रहती हैं कि क्यों हमारी उपमा इस कृष्ण के साथ दे रही हो, क्योंकि सूरदास हमको शर्मावत ना हो हमारो नाम लेत। क्योंकि हमारा नाम लेकर उपमा, जब कृष्ण के साथ हमारा नाम लेते हैं, हमारी उपमा लेते हैं, तो हमें बहुत शर्म लगती है। इसलिए गाली दिया करते हैं कवियों को कि इतनी सुंदरता कृष्ण में है कि हमारा नाम कृष्ण के साथ नहीं लेना चाहिए। वास्तव में जितने भी चीज है बहुत ही सुंदर सुंदर है, चंद्रमा की चांदनी बहुत सुंदर है, कमल सबसे अच्छा फूल है और बिजली की चमक सबसे अच्छी है, लेकिन यह अच्छी अच्छी चीज भी कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। इतने सुंदर कृष्ण है, इतनी सुंदरता कृष्ण में है, लेकिन इतने सुंदर करोड़ों करोड़ों कामदेव को लोभित करने वाले कृष्ण आज राधा को देखकर मूर्छित हो गए। हजारों हजारों लोगों को मूर्छित कर देते हैं कृष्ण अपनी सुंदरता से। बड़े बड़े सुंदरता के भिखारी, सुंदरता के लोभ वाले कृष्ण को देखकर पानी भरते हैं। एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं, ये रंगनाथ की, श्रीरंगम की कथा है, सत्य घटना। एक ऐसा व्यक्ति था जो रूप का पुजारी था, अर्थात रूप के ऊपर मोहित था, और वो अपनी पत्नी को देखे बिना रह नहीं सकता था। उस व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर थी और निरंतर अपनी पत्नी को देखते रहता था। और जब उसकी पत्नी चलती थी तो वह पीछे पांव करते करते उसके सामने देख देख कर चलता था। तो एक दिन उसकी पत्नी रंगनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रही थी और बहुत धूप थी, तो यह उसका पति हाथ में छाता लेकर उल्टे पांव चलते चलते रंगनाथ मंदिर में आ रहा था। तो वहां पर किसी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? एक बहुत बड़े भक्त ने पूछा, ये क्या है? तो किसी ने आकर कहा कि ये प्रभु जी, ये रूप का पुजारी है और इसे जीवन में सुंदरता बहुत अच्छी लगती है, वो भी स्त्री की सुंदरता। तो जो वहां के हेड पुजारी थे उन्होंने सोचा, ठीक है, अब इसका कार्य हम कर देते हैं। तो मिले उस व्यक्ति से जो निरंतर उसकी पत्नी के सामने देखता रहता था, कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे सुंदरता बहुत अच्छी लगती है और मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं उसके सामने देखे बिना रह नहीं सकता। तो पुजारी ने कहा, अगर मैं इससे भी अच्छी सुंदरता वाली स्त्री दिखा दूं तो? कहने लगा, तो मैं उसके सामने देखूंगा, मुझे तो रूप चाहिए। मुझे इस संसार में मुझे ये मेरी पत्नी अच्छी लग रही है, अगर इससे अच्छी हो तो उसके सामने मैं देखूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। तब लेकर गए और रंगनाथ भगवान विष्णु का वो मंदिर था। तो पुजारी ने प्रार्थना किया भगवान विष्णु से कि कृपया करके आप अपना मोहिनी रूप इसे दिखा दीजिए। तो भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप उस रूप के पुजारी को दिखाया और वो देखते ही रह गया। पत्नी को कह दिया, तुम जाओ, मैं यहाँ मंदिर में ही रहता हूँ। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
तो ये है भगवान के रूप की सुंदरता। शिव जी जो कितनी भी बड़ी, साक्षात कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए शिव जी। इस दुनिया में कामदेव नहीं रहता था, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भोगी किसी के साथ संभोग नहीं कर सकता था, क्योंकि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी भी भगवान के रूप मोहिनी को देखकर पानी पानी हो गए। तो ये है कृष्ण के रूप की सुंदरता। और फिर उसी मोहिनी रूप ने भगवान विष्णु का रूप ले लिया। बाद में आगे चलकर वह रूप का पुजारी भगवान के रूप का भक्त बन गए। तो तात्पर्य यह है कि यह है भगवान की सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता। इतने सुंदर है, ऑल अट्रैक्टिव, संसार के सभी लोग कृष्ण से मोहित हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कृष्ण राधा रानी को देखकर मूर्छित हो गए और गिर गए। और राधा रानी को पता न चला, मैं क्या करूं, अगर किसी सखी को बताऊंगी तो यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि ये कुंज में लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं। और उतने में ताली बजी, अब क्या करूं, ताली बजी तो सबको मिलना था। अब राधा बाहर नहीं निकलती तो सब लोग उस कुंज में आ जाती, अब क्या करें। बहुत बड़ा धर्म संकट राधा रानी को हुआ, लेकिन अंत में राधा रानी लोक लज्जा के कारण वहां से बाहर आ गई और कृष्ण वहां को छोड़ दिया। और सूर्यास्त हो चुका था, दिन ढल गया था, तब सारी सखियों ने कहा, चलो हम स्त्रियां, हम लड़कियां हैं, हमें घर पे जाना चाहिए। और राधा रानी कृष्ण को उस कुंज में छोड़कर अपने घर बरसाना चली गई। लेकिन आश्चर्य की बात, राधा रानी जब घर गई तब उसकी नींद हराम हो गई। कुछ नहीं खाया राधा ने, कुछ नहीं पिया। वृषभानु और कीर्तिदा कहने लगे, क्या हो गया है राधा तुम्हें, तुम कुछ खा नहीं रही हो, कुछ पी नहीं रही हो, क्या, कौन सा रोग, कौन सी बीमारी तुम्हें लग गई है, कौन सी बात का दुख है? राधा ने कुछ नहीं कहा। अंत में कीर्तिदा ने, राधा रानी की माता ने ललिता को कहा कि तुम जाओ, क्योंकि तुम उसकी सबसे निकट की सखी हो, और तुम ही उसे पूछो कि क्या बात है। तब ललिता जी राधा रानी के पास आती हैं और राधा रानी कहती हैं, सखी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उस नन्हे से कोमल से बालक को मैं अकेले उस कुंज में छोड़कर आ गई हूँ। बेचारा मूर्छित हो गया मुझे देखकर, और किस हालत में होगा, जंगल में उस कुंज में पड़ा था, कोई खा गया होगा, क्या हुआ होगा उस बालक का, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैं दुखी हूं और मैं उसको मिलना चाहती हूँ। ललिता ने कहा, ठीक है। बस ललिता और विशाखा, राधा रानी की जितनी भी सखियां हैं उसका यही काम होता है ನಿಕುಂಜ ಯೋನೋವೃತಿ ಕೇಳಿಸಿದೆಯೇ? ಯಾಯಾಲಿ ಬಿಲ್ ಯುಕ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ತತ್ರಾತಿ ದಕ್ಷಾತ್ ಅತಿವಲ್ಲಭಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ. ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವ್ಯೋರ ಪಾರ ಮಾಧುರ್ಯ ಲೀಲಾ ಗುಣರೂಪ ನಾಮ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಾಸ್ವಾದನ ಲೋಲುಪಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ತತ್ರಾತಿ ದಕ್ಷಾತ್ ಅತಿವಲ್ಲಭಸ್ಯ. ಸಖಿ ಜೊ ಹೇ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಕೋ ಮಿಲಾನೆ ಮೇ ಅತ್ಯಂತ ಪಟು ರಹತಿ ಹೈ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್. ತೊ ಲಲಿತಾಜಿ ದೂಸರೆ ದಿನ ಸುಬಹ ಗೈ ಗೋಕುಲ್ ಮೇ ಔರ್ ಗೋಕುಲ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಘರ್ ಜಾಕರ್ ಯಶೋದಾ ಮೈಯಾ ಸೆ ಕಹನೆ ಲಗಿ, ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಯಹ ಗವಾರ್ ಔರ್ ಯಹ ಗೈಯಾ ಚರಾನೆ ವಾಲಾ ಹಿ ರಖನಾ ಚಾಹತಿ ಹೋ ಕಿ ಕುಚ್ ಕಲಾ ಬಲಾ ಸಿಖಾನಾ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಬನಾನಾ ಹೈ? ಹಮಾರಿ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷಾ ಮೇ ಕಹತೆ ಇಸೆ ಭರವಾಡಿ ರಖನಾ ಚಾಹತಿ ಹೋ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಇಸೆ ಕುಚ್ ಪಢಾನಾ ಲಿಖಾನಾ ಔರ್ ಕುಚ್ ಕಲಾ ಸಿಖಾನಿ ಹೈ? ಇಶಾ ದಿನ ಕಹಾ ಅಗರ್ ಕಲಾ ಸಿಖೆ ತೊ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಿ ಬಾತ್ ಹೈ. ತೊ ಲಲಿತಾ ನೆ ಕಹಾ ಮೇ ಇಸೆ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಗಾನೆ ಕಿ ಕಲಾ ಸಿಖಾ ದೇತಿ ಹೂಂ, ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ಶರ್ತ್ ಹೈ, ತುಮೇ ದೋ ತಿನ್ ದಿನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಸೆ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಭೇಜನಾ ಹೋಗಾ. ಯಶೋಧನ ಮೈಯಾ ನೆ ಕಹಾ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಲೇಕರ್ ಜಾಯಿಯೆ, ಲೇಕಿನ್ ಸಿಖಾ ಕರ್ ಭೇಜ ದೇನಾ. ತಬ್ ಲಲಿತಾ ಜಹಾ ಪರ್ ರಾಧಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಲೆ ಥೆ ಜಿಸ್ ಕುಂಜ್ ಮೇ ಜಿಸ್ ವನ್ ಮೇ, ಲಲಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಲೇಕರ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಆತಿ ಹೈ ಔರ್ ಸಾರಿ ಸಖಿಯಾ ರಾಧಾ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಉಸಿ ಕುಂಜ್ ಮೇ ಆತಿ ಹೈ. ಔರ್ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಜಬ್ ಪಹಲಿ ಯೇ ಮಿಲನ್ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಥಾ ಜಬ್ ಮೂರ್ಛಿತ್ ಹೋ ಗಯೆ ಕೃಷ್ಣ, ಲೇಕಿನ್ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ಕೆ ಮಿಲನ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ನೆ ಠೀಕ್ ಸೆ ರಾಧಾ ಕೋ ದೇಖಾ ನಹೀ ಥಾ, ಔರ್ ಕುಂಜ್ ಕೆ ಅಂಧೇರೆ ಮೇ ರಾಧಾ ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಠೀಕ್ ಸೆ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ. ತೊ ಮಾನ್ ಲೀಜಿಯೆ ಯಹ ಹಿ ಪ್ರಥಮ ಮಿಲನ್ ಅಬ್ ರಾಧಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಹೋನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಗೋಕುಲ್ ಸೆ ಲಲಿತಾಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಲೇಕರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಹೈ ಔರ್ ಬರ್ಸಾನಾ ಸೆ ಸಾರಿ ಸಖಿಯಾ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಆ ರಹಿ ಹೈ. ರಾಧಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಸ್ ಬರ್ಸಾನಾ ಕೆ ಉತ್ತರಿ ಛೋರ್ ಪರ್ ಉಸ್ ವನ್ ಮೇ ಮಿಲೆ ಔರ್ ರಾಧಾ ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಓರ್ ದೇಖಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಕಿ ಓರ್ ದೇಖಾ ಔರ್ ದೇಖ ಕರ್ ದೇಖತೆ ಹಿ ರಹ ಗಯೆ. ದೋನೋ ಕಿ ಸುಂದರತಾ ಆಪಸ್ ಮೇ ಟಕರಾಯಿ ಔರ್ ದೋನೋ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೋ ದೇಖ ಕರ್ ಅಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಕಾರ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಉಭರ್ನೆ ಲಗಾ ಔರ್ ದೋನೋ ಕಿ ಆಂಖೋ ಸೆ ಅಜಸ್ ಅವಿರತ್ ಅಶ್ರು ಧಾರಾ ನಿಕಲ್ನೆ ಲಗಿ ಔರ್ ಇತ್ನೆ ಅಶ್ರು ಬಹೆ ಇತ್ನೆ ಅಶ್ರು ಬಹೆ ಕಿ ಉಸ್ ಅಶ್ರು ಕಾ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಸರೋವರ ಹಿ ಬನ್ ಗಯಾ. ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ತಾಲಾಬ್ ಸರೋವರ ರಾಧಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಆಂಖ ಸೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹುವೆ ಅಶ್ರು ಸೆ ಬನ್ ಗಯಾ ಔರ್ ಸರೋವರ ಕಾ ನಾಮ ಹುವಾ ಪ್ರೇಮ ಸರೋವರ. ಆಜ್ ಭಿ ವಹ ಸರೋವರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ, ಆಪ್ ದೇಖ ಸಕ್ತೆ ಹೋ, ಉಸ್ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಪ್ರೇಮ ಸರೋವರ ಯ ಸರೋವರ ಕೋಯ್ ಪಾನಿ ಸೆ ನಹೀ ಬನಾ ಹೈ, ಯ ಸರೋವರ ರಾಧಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಅಶ್ರು ಕೆ ಜಲ್ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ. ತೊ ಪ್ರಥಮ ಮಿಲನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಧಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ರಹಾ, ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ ಮಿಲನ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ ಭಾವ ದೋನೋ ನೆ ಪ್ರಕಟ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉಸಿ ದಿನ ಸೆ ರಾಧಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇ ಪ್ರೇಮ ಲೀಲಾ ಶುರು ಹೋ ಗಯಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಸೆ. ಔರ್ ಜಬ್ ಪ್ರೇಮ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಘನಾ, ಜಬ್ ಘನಾ ಪ್ರೇಮ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ತೊ ಮಾನ್ ಕರ್ನಾ ಅಪಮಾನ್ ಕರ್ನಾ ಝಗಡಾ ಕರ್ನಾ ಯೆ ಸಬ್ ಚಲತಾ ರಹತಾ ಹೈ. ಝಗಡಾ ಹೋನಾ ಭಿ ಪ್ರೇಮ ಕಿ ನಿಶಾನಿ ಹೈ, ಜ್ಯಾದಾ ನಹೀ ಮಹೀನೆ ಮೇ ಏಕ್ ದೋ ಬಾರ್ ಠೀಕ್ ಹೈ. ಪತಿ ಔರ್ ಪತ್ನಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಮಹೀನೆ ಮೇ ಏಕ್ ದೋ ಬಾರ್ ಅಗರ್ ಝಗಡಾ ಹೋ ತೊ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಯ ಪ್ರೇಮ ರೋಜ್ ನಹೀ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ತೊ ಯೇ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಲಕ್ಷಣ ಹೈ, ಮಾನ್ ಹೋನಾ, ರೂಠನಾ, ಮನಾನಾ, ಅಪಮಾನ್ ಕರ್ನಾ ಔರ್ ಝಗಡಾ ಕರ್ನಾ. ತೊ ಅಬ್ ತೊ ಪ್ರೇಮ ಲೀಲಾ ಬಢತಿ ಗಯಿ ಆಗೆ ಔರ್ ಝಗಡಾ ಭಿ ಬಹುತ್ ಹೋತಾ ಥಾ. ತೊ ಸಬ್ ತೊ ನಹೀ, ಏಕ್ ಝಗಡೆ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಕರ್ ದೂ ಕಿ ಅಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಬ್ ರಾಧಾ ಔರ್ ಸಾರಿ ಸಖಿಯಾ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಬಡಿ ಹೋತಿ ಗಯಿ. ತೊ ಥೋಡಿ ಬಡಿ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೆ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಜಿತಿ ಭಿ ಸಖಿಯಾ ಥಿ ವಹ ಗಯ್ಯಾ ಕಾ ದೂಧ ಕಾ ಮಕ್ಕನ್ ಬನಾಕರ್ ಛಾಸ್ ಬನಾಕರ್ ಘೀ ಬನಾಕರ್ ಯ ಸಬ್ ಕುಛ ಮಥುರಾ ಮೇ ಜಾತೆ ಥೆ ಬೇಚನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಂಸ್ ಕೆ ವಹಾಂ. ಬರ್ಸಾನಾ ಸೆ ಮಥುರಾ ರೋಜ್ ಸುಬಹ ಜಾತೆ ಥೆ ಔರ್ ದುಪಹರ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ವಾಪಸ್ ಲೋಟತೆ ಥೆ. ಯಹ ಕ್ರಮ ಥಾ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಸಖಿಯೋ ಕಾ. ತೊ ಜಿಸ್ ರಾಸ್ತೆ ಸೆ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಸಖಿಯಾ ಬರ್ಸಾನಾ ಸೆ ಮಥುರಾ ಜಾತಿ ಥಿ ಉಸ್ ರಾಸ್ತೆ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ನಿ ಟೀಮ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಖಡೆ ರಹ ಜಾತೆ ಥೆ ಔರ್ ಜಗಾ ಭಿ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಪಕಡೆ. ಕೈಸಿ ಜಗಾ कि बरसाना से मथुरा जाने के बीच में एक ऐसी एक पहाड़ी जगह पड़ती है। बरसाना जो है पहाड़ पर बसा हुआ है। हम जब आपको दिवाली पर लेकर जाएंगे तब आप दर्शन करेंगे। बरसाना पहाड़ पर है और उस पहाड़ से निकलते वक्त उसमें से एक छोटी सी गली, गली भी नहीं कहेंगे, एक खोर, एक छोटी सी जगह, जिस गली से एक ही व्यक्ति पसार हो सकता है, दो नहीं, एक साथ दो नहीं निकल सकते। आज भी हम जब जाते हैं वहां पर तो एक साथ एक ही निकल सकता है, दो नहीं, डेढ़ व्यक्ति भी नहीं निकल सकता। तो ऐसी जगह पर कृष्ण अपनी टीम को लेकर खड़े रखते थे और उसका नाम भी है, उसका नाम है सांकड़ी खोर। बहुत ही सांकड़ी जगह है, बहुत ही छोटी जगह है, जहां से एक ही, अगर गोपियों को भी निकलना होता तो लाइन बनाकर निकलना पड़ता था उस जगह से, और वह जगह बरसाना की जगह थी। तो कृष्ण अपने गोकुल से बरसाना जाते थे और बरसाना में अपना अड्डा जमा कर रखते थे, और जब सारी गोपियां वहां से निकलती थी तब कृष्ण तो सबसे पहले, जैसे यहाँ पर आप मीरा रोड जाते हो तो डंडा ऐसे लगा देते हैं फाटक लगा देते हैं, तो ऐसे कृष्ण अपना फाटक वहां पर लगा देते थे और कहते थे गोपियां तुम यहां से नहीं जा सकती। तो गोपियां तो गाली देकर कहती, क्या तेरे बाप की जगह है? वास्तव में कृष्ण को व्रज की गाली सुनने में जितना आनंद आता था उतना जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट पाप हरे और गिरे, इतना आनंद उसमें नहीं आता है जितना कृष्ण को गाली सुनने में आता। तो गाली देकर कहती थी क्या तेरे बाप की जगह है? हमारे गांव में आकर, बरसाना में आकर तुम हमसे ही, हमको ही यहां पर जाने के लिए रोक रहे हो, क्यों क्यों रोक रहे हो? रोकने का कुछ कारण तो होगा। कृष्ण ने कहा टैक्स चाहिए दान चाहिए, इसको व्रज भाषा में दान कहते हैं, इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, सिंपल भाषा में टैक्स दो हमें। तो गोपिया कहती हमारे गांव में आकर आप हमसे ही टैक्स मांगोगे? अब आपको कह दे इस घर से, अब अमित प्रभु का घर है, अब स्वामी प्रभु यहाँ पर आ जाए और कहे कि इस घर से अगर बाहर निकलना है तो टैक्स दीजिए, अपने ही घर में टैक्स मांगने के लिए कोई आ जाए तो कितना अजीब लगता है। तो गोपिया कहने लगी हमारे गांव में हमें ही टैक्स मांग रहे हो, अरे जा यहाँ से। कृष्ण ने कहा हम नहीं जाएंगे, टैक्स चाहिए। तो टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स देना होगा। कृष्ण कहते टैक्स देना होगा, गोपिया कहते टैक्स नहीं देना होगा, देना होगा नहीं देना होगा, देना होगा नहीं देना, इसमें बहुत बड़ी कोलाहल, बहुत बड़ी आवाज हो जाती थी, देना होगा और नहीं देना होगा। अगर टैक्स नहीं दोगी तो यह सारा दही मक्खन हम यहां पर ही नष्ट कर डालेंगे, कृष्ण और सारी टीम कहते थे। तो गोपिया ने कहा तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, अगर ऐसा करोगे तो हम कंस को बता देगी, तुम कंस को नहीं जानते हो, कंस बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, हम कंस को बता देगी, कंस को बता देगी, कंस को बता देगी। कृष्ण कहते क्या कंस कंस कर रहे हो, कंस क्या खसम लगे तेरो, कंस क्या तेरा पति लगता है, कंस क्या तुम सब लोग का पति है, अरे देखती रहना, करो कंस निर्वंश मिट दऊ नाम निशानी रे, एक एक दिन में कंस क्या कंस के साथ सारे कुल को मिटा दूंगा, नाम निशानी मिटा दूंगा, तुम देखती रहना, और उस कंस का डर हमें दिखा रही हो। तो इस प्रकार कृष्ण और सब गोपियों के बीच में होता था और सारी गोपियां ऐसे खड़ी रहती थी, कृष्ण इशारा करते थे तब सारे गोपाल एक पत्थर से, या गुजराती में वो बेच की कहते हैं, खींच कर जितनी भी गोपियां मटके में दही और मक्खन लेकर खड़ी रहती है सब पत्थर मारते थे और गोली मारते थे तो सारा मटका टूट जाता था और गोपी पूरा पानी पानी, दही दही, घी घी और मक्खन मक्खन हो जाते थे। इस प्रकार की हालत कृष्ण गोपिया की करते थे और सारी गोपियां रूठ कर चली जाती थी। इस प्रकार से प्रतिदिन डेली शेड्यूल कृष्ण बना कर रखे थे, डेली टोल टैक्स वहां पर देना और डेली इस प्रकार का झगड़ा होता था। तो एक दिन की बात, राधा रानी उसमें सम्मिलित नहीं थी, सारी गोपियां जाती थी, एक दिन सभी गोपियों ने राधा रानी को बताया कि इस प्रकार कृष्ण हमें परेशान कर रहा है। तब सारी सखियों ने मीटिंग की कि अब कुछ करना होगा हमें। तब उस दिन व्रज की सैकड़ों गोपियां, हजारों हजारों गोपियां अब छिप कर वहां से आ रही थी, पहले तो थोड़ी ही गोपियां थी, बाकी की सारी गोपियां छिप गई थी। तो रोज की तरह कृष्ण ने कहा दान दीजिए, टैक्स लाइए। गोपियां ने कहा टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं है। तब सारे ग्वाल वाल आए गोपियों की मटकी तोड़ने के लिए। तब राधा रानी ने जब इशारा किया तब जितनी हजारों हजारों गोपियां, ग्वाल बाल तो बहुत कम थे, अब हजारों दो तो तीन तीन चार चार गोपियां एक एक ग्वाल बाल को पकड़ ली और सब लोग पकड़ में आ गए। तो मनसुखा और इत्यादि सखा जो थे वो तो सफाई पेश करने लगे, अरे हमें तो छोड़ दीजिए, हम इसमें सम्मिलित नहीं है, ये तो कृष्ण ने हमें कहा था, कृष्ण ने इशारा किया इसलिए हमने ये सब किया, यही चोर है, यही सब करने वाला है, इसको पकड़ो इसको मारो, हमारा कोई दोष नहीं है। और सारे ग्वाल बाल भाग जाते थे वहां से और बेचारे कृष्ण अकेले पकड़ में आ जाते थे। और सारी गोपियां कृष्ण को परेशान करके रख देती थी। सबसे पहले कृष्ण को एक पेड़ के साथ बांध दिया, हाथ पैर दोनों बांध दिया और कृष्ण बिल्कुल भोले बन गए। एक्टिंग करना नटनागर तो है ही, जानते तो है वह, भोले बन गए। लेकिन आज किसी को दया नहीं आई कृष्ण के ऊपर। सब गोपियां आज तो इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे, रोज ये टैक्स मांगता है, रोज ये टैक्स मांगता है। हमें भी कभी होता है कि रोज मंदिर जाते हैं तो 20-20 रुपया लेते रहते। एक दिन कुछ आगे आदमी तो मारेंगे इस टैक्स वाले को। तो बेचारी गोपिया का तो कितना मक्खन और कितना घी बिगड़ता था, बहुत क्रोधित थी। और पकड़ लिया कृष्ण को, बांध दिया और क्या करना है क्या करना है, तो सबने मीटिंग किया, सबसे पहले इसे कपड़े उतारो। तो कृष्ण के कपड़े उतार कर कहा इसे सखी एक स्त्री के वेश पहनाओ, गोपी ड्रेस पहनाओ इसे। तो कृष्ण को वेश निकाल कर घाघरा पहनाया, चोली पहनाई, सिर पर वो रख दिया, चुन्नी रख दी और बहुत ही सुंदर मेकअप किया, यहाँ पर लगा दिया और बहुत ही सुंदर सखी की तरह कृष्ण लग रहे थे। अब ठीक है, अब सखी बन गई, हाँ बन गई, अब इसके ऊपर एक मटका रखो, देखते कैसा लगता है मटका इसके ऊपर। तो कृष्ण बेचारे भोले थे, अब मटका रख दिया उसके सिर के ऊपर। तब किसी गोपी ने कहा अब फोड़ो इसे। तो फोड़ देते और कृष्ण बेचारे पूरे मक्खन घी पानी पानी हो जाते। तो इस प्रकार कृष्ण रोते रोते कहते थे छोड़ दीजिए, भूल हो गई, गलती हो गई, अब कल से मैं नहीं करूंगा, भूल हो गई, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेगी। सारी गोपियां कहती थी। तब किसी गोपियों को दया आ गई और कहने लगी अगर तुम राधा रानी से क्षमा मांगोगे और राधा रानी अगर तुम्हें क्षमा कर दे तो हम छोड़ देगी आपको। तब कृष्ण बहुत ही भोली सूरत बनाकर, बहुत ही भोले बनकर राधा जी के पास गए और राधा जी के पास जाकर कहने लगे वास्तव में हमने अपराध तो किया है, मैं मेरा अपराध, मेरी भूल कबूल करता हूँ कि इस प्रकार मैं सबको परेशान करके रखा हूँ। लेकिन राधे आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो जैसे ही कृष्ण कभी नहीं करूंगा बोलने जाते थे, राधा रानी उसके मुख पर हाथ रख लेती थी। कृष्ण इस प्रकार की लीला अगर नहीं करोगे तो हमें रहने का आनंद क्या आएगा। वास्तव में इस लीला में गोपियों को आनंद आता था, ऐसी बात नहीं है कि गोपियां इससे दुखी थी, वास्तव में इसमें ही आनंद लेते थे। तो कृष्ण जब बोलने गए कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा तो राधा रानी ने मुख पर हाथ रख लिया और कहने लगी कि श्याम सुंदर वास्तव में आप ये जो लीला करते हो इसमें ही हमें आनंद आता है और हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से झगड़े की लीला भी कृष्ण और गोपियां सखियों के बीच में होती थी, राधा रानी के बीच में होती थी। और इस प्रकार से प्रेम आगे चलता रहा राधा रानी सखियों का और कृष्ण का, धीरे धीरे बड़े हुए और भी प्रेम गाढ़ा हो गया। और जब गाढ़ा प्रेम हो जाता है, शुद्ध प्रेम हो जाता है, तब प्रेम की परिभाषा है कि शांति अव्यर्थ कालोत्वम निराशी मान शून्यता। प्रेम जब होता है किसी के साथ, शुद्ध प्रेम, तो उसमें मनाना और रूठना और मनाना ये गुण आ जाता है। जब गाढ़ा प्रेम बन जाता है तब मनाना और रूठना ये गुण आ जाता है। तो राधा रानी भी कई बार मान कर लिया करती थी, रूठ जाती थी और कृष्ण घंटों भर राधा रानी को मनाते रहते थे। तो आइए एक रूठने की लीला भी हम श्रवण कर लें। तो एक दिन राधा रानी बहुत ही सज धज धज कर, वास्तव में जब कोई लड़की लड़के से मिलने जाती है तो बहुत ही सज धज कर ही जाती है। तो राधा रानी बहुत सज धज कर, अब क्या कहेंगे, बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना और अपने घर में जितना भी आभूषण था सब पहन लिया। नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन ब्यूटी पार्लर का नाम याद आ जाता है। सब मेकअप वेकअप करके, राधा रानी को मेकअप की जरूरत नहीं थी, क्षमा कीजिए। तो अलंकार गले में कान में, बस सुंदर साड़ी पहनकर राधा रानी कृष्ण को मिलने के लिए आई। तो कृष्ण को मिलने पर कही कि कृष्ण आज घर से जितनी भी अच्छी अच्छी सामग्री थी पहनने की वो मैं सब लगा कर आई हूँ, तो आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। राधा रानी ने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तब कृष्ण ने कहा राधा तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। अब क्या बताऊं, कृष्ण उपमा देने लगे कि तुम्हारा मुखमंडल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मुखमंडल साक्षात चंद्रमा ही तुम्हारे सिर पर आकर बैठा हो, इतना सुंदर तुम्हारा मुखमंडल लग रहा है। और तुम्हारे शरीर से इतनी क्रांति निकल रही, इतनी क्रांति कि 10-15 चंद्रमा तुम्हारे पेट में आकर समा गए हो और तेज निकल रहा हो, इतनी क्रांति और इतना सुंदर तुम्हारा रूप लग रहा है। और तुम्हारा ये जो तिलक है, जो क्या कहते हैं इसे, बिंदी जो है वह भी चंद्रमा जैसी चमक रही है, लग रही है, कान के कुंडल भी चंद्रमा। तो ये चंद्रमा चंद्रमा सुनकर राधा रानी को गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि राधा रानी की कुछ दुश्मनें थी और वो भी आध्यात्मिक जगत की दुश्मन होती है, जो इस राधा रानी जिसे ईर्ष्या करती वो है चंद्रावली। कृष्ण की जो सखी होती थी उसके उसका दो ग्रुप था, कृष्ण की सखिया का दो ग्रुप है, एक है राधा रानी ललिता विशाखा का ग्रुप और एक है चंद्रावली का ग्रुप। तो हर वक्त चंद्रावली का ग्रुप और राधा रानी ललिता विशाखा का ग्रुप आपस में झगड़ा करते रहते हैं। राधा रानी और ललिता विशाखा ये नहीं चाहती है कि कृष्ण चंद्रावली से मिले, और चंद्रावली नहीं चाहती है कृष्ण राधा से या ललिता विशाखा से मिले। तो जब कृष्ण ने कहा कि चंद्रमा जैसी लग रही हो, चांदनी जैसी लग रही हो, तब राधा रानी मान कर ली, तुम लगता है तुम चंद्रावली से मिलकर आए हो, इसलिए तुम चंद्रा चांदनी और चंद्रमा ही याद आ रहा है, और ऐसा करके मान करके बैठ गई। अब कृष्ण ने उसको कितना मनाया, हा हा करता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, तुम बोलो वो करने को तैयार हूँ, लेकिन राधा रानी मानने को तैयार नहीं। तब हमारे भक्त एक बहुत ही सुंदर इस पर भजन गाते हैं कि हे बरसाने वारी, हे वृषभानु दुलारी, तुम सुनो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मान जाओ। तो इस पर लिखे हैं, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने कदे सुन बरसाने वाली हे बरसाने वाली राधे, कि तेरा गुलाम तेरे पांव पड़ रहा है। मैं कृष्ण जो इस 14 भुवन का नाथ हूँ, सबका पिता हूँ, आज तुम्हारे पैर में पड़कर क्षमा याचना करता हूँ कि तुम मान जाओ। लेकिन फिर भी राधा रानी का मान कम नहीं होता है। अंत में कृष्ण मोर बनकर नाचने लगे, लेकिन फिर भी राधा का मान कम नहीं हुआ। जब कृष्ण से कुछ नहीं हुआ, तब कृष्ण ने ललिता और विशाखा को कहा कि कृपया करके आप जाओ, और अब तो राजा रानी को कहो कि अब तो पैर करे, अब तो मान जाए। तब ललिता और विशाखा जाती है राधा रानी के पास, और राधा रानी से जाकर कहने लगी कि राधे, तुम किससे रूठ रही हो? तुम जिससे रूठ रही हो, तुम जिस पर गुस्सा कर रही हो, क्या यह रूठने की चीज है? कृष्ण के साथ कभी रूठा जाता है? जिसके साथ बात करने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, और वह कृष्ण अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर, इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे पास आता है तुम्हें मिलने के लिए, और तुम इसको रूठ कर बैठी हो? सखी, तुम कितनी निष्ठुर हो। तुम नहीं जानती कि कृष्ण भी तुम्हारे विरह में, तुम रूठी हो कृष्ण, रूठी हो इसलिए कृष्ण भी तुम्हारे विरह में दुखी हैं और रो रहे हैं। राधा, अब तो पैर करो, अब तो मान जाओ। और लेकिन फिर भी राधा रानी मानी नहीं। तब ललिता और विशाखा कहने लगी, राधे, ये तुम्हारा कैसा मान है, कैसा मान है? रात से लेकर शाम से मान करना शुरू किया था, अब चंद्रमा ढलने आ गया, सूरज बाहर निकलने लगा, लेकिन फिर भी राधा रानी तुम्हारा मान कम नहीं हुआ। राधे, तुम कितने निष्ठुर हो, कृष्ण के साथ तुम इतना मान करके बैठी हो। तो इस प्रकार से ललिता और विशाखा मनाया करती थी, और कृष्ण भी फिर आए मनाने के लिए। कृष्ण भी कहने लगे, राधा, अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ। हे राधे, तुम नहीं जानती हो, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सारी कला जानता हूं, सर्व कला विशारद हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, और मुझ में कितनी शक्ति है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सुधा जी एक पद में लिखे हैं कि कृष्ण में कितनी शक्ति है, हजारों हजारों कृष्ण के अवतार हैं, और उस अवतारों में कृष्ण ने, भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, मैंने नरसिंह रूप लेकर हिरण्याकश्यप को मार डाला, जो सभी देवताओं के नाक में दम करके रखा था। हिरण्याकश्यप को मारा राम अवतार में, बाली, तिश्रा, रावण, कुंभ, करण, खल, दुष्यंत इत्यादि, मारीच इत्यादि सभी लोगों को, बड़े बड़े असुरों का वध किया। और बड़े बड़े परशुराम अवतार में 21 बार इस संसार में रहने वाले क्षत्रियों को मार डाला, खून की नदियां बहा दी। इतने बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े राक्षसों को मैंने मार दिया, इतना वध किया। लेकिन राधे, यह सबको मारने में मुझे इतना परिश्रम नहीं हुआ था जितना परिश्रम मुझे तुम्हें मनाने में हो रहा है। वास्तव में राधे, आज ये कृष्ण तुम्हारे मान के सामने हार चुका है। तुम्हारे मान की जीत हुई और ये कृष्ण की हार हुई। मैं बेबस हूं, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, आज मैं तुम्हारे मान के सामने हार चुका हूं। तब कुछ राधे कृष्ण के सामने देखती थी और अपना मान बंद करती थी। इस प्रकार से मान लीला हुआ करती थी। कई सारी मान लीला भागवत में है, समय बहुत कम है, लेकिन अब आया है तो एक लीला और कह देता हूं। हमारा भी मन नहीं हो रहा कि हम यहाँ से भागे भागे और सब कुछ। लेकिन आपको परीक्षित महाराज का गुण लाना होगा। पिवन त्वाम रखाम मुखाम भुजम च्युतम हरि कथा मृतम। हरि कथा सुनते सुनते भूख, प्यास और नींद नहीं आनी चाहिए। तो एक दिन की बात, कृष्ण तो बहुत सुंदर है जो हमने आपको वर्णन किया, लेकिन कृष्ण के हाथ में जब बंसरी आ जाती है तब तो उसकी सुंदरता की बात ही नहीं। अब वेणु माधुरी का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। जब कृष्ण के हाथ में मुरली आती है और जब वो मुरली कृष्ण के अधर को टच होती है, तब उसमें से इतना सुंदर नाद निकलता है कि इस दुनिया की प्रकृति जो है, उस व्रज की प्रकृति बिल्कुल पलट जाती है। प्रकृति के जितने भी नियम है वो बिल्कुल बदल जाते हैं, पलट जाते हैं कृष्ण के वेणु नाद सुनकर। कृष्ण जब बंसरी बजाते हैं तब नदी में पानी खलखल खलखल जो बहता रहता है वो कृष्ण की बंसी सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो जाता है। इतना सुंदर नाद कृष्ण की बंसरी से होता है। जो जड़ है वह चैतन्य बन जाता है और जो चैतन्य है वह जड़ बन जाता है कृष्ण की मुरली में। इतना आनंद, इतना रस। पत्थर पिघलने लगते हैं कृष्ण की मुरली सुनने पर और लताए पताए पेड़ झुकने लगते हैं कृष्ण की मुरली सुनने पर। और गैया, जब कृष्ण की मुरली गैया सुनने लगती है तो खल खल दूध देने लगती है, ऐसे दूध गिरने लगता है, नदी बहती है दूध की। और कृष्ण की मुरली का नाद सुनकर गोपियां बिल्कुल विस्मृत हो जाती है। घर का एक भी काम ठीक से नहीं होता है कृष्ण की मुरली सुनकर, कृष्ण की बंसरी में इतनी ताकत। गोपियां प्रार्थना करती हैं ब्रह्मा जी को, विष्णु को, कि आप हमें शक्ति दीजिए कि हम थोड़े क्षण के लिए कृष्ण को भूल सके। हमारी प्रार्थना क्या होती है कि हम थोड़े क्षण कृष्ण को याद रखे या उसका नाम ले, हम पर कृपा कीजिए। लेकिन गोपियां क्या प्रार्थना करती थी कि कृपया करके आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम थोड़े समय के लिए कृष्ण को भूल सके, क्योंकि इतनी सुंदर उसकी बंसरी की नाद है कि हम रह नहीं सकते। वास्तव में श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में रास पंचाध्याय में वर्णन है, बहुत ही बृहद वर्णन है। जब कृष्ण ने मुरली नाद किया शरद पूर्णिमा की रात को, तब सारी गोपियों ने जब यह नाद सुना तब सब गोपियां अपना घर बार सब छोड़कर कृष्ण के पास आई। कुछ गोपियां अपने पतियों को खाना परोस रही थी, लेकिन कृष्ण ने जब मुरली का नाद किया तब वो खाना पिरसते पिरसते पति क्या है छोड़ो इसे, ये कुछ भी कर ले, जाना है कृष्ण के पास। अपने पति को छोड़कर आप कल्पना कीजिए, एक स्त्री को, एक पत्नी को अपने पति को पिरसते हुए छोड़कर जाना, कितना आनंद होगा उस मुरली के नाद में, उस कृष्ण में। कुछ स्त्रियां, कुछ गोपियां अपने सास और ससुर की सेवा कर रही थी, पांव दबा रही थी, लेकिन कृष्ण के मुरली का नाद सुनकर वो वहां से भागी सेवा करते करते। किसी भी प्रकार की लोक लज्जा शर्म सब तोड़कर, सबको आली पार करते हुए गोपियां कृष्ण के पास गई। कुछ गोपियां खाना पका रही थी, खाना पकाते पकाते भागी और यहाँ तक कुछ गोपियां अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध पिला रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही कृष्ण का वेणुनाद शुरू हुआ, अपने दूध पीछे बीते बच्चे को छोड़कर गोपियां कृष्ण के पास भाग गई। इतनी तीव्रता होनी चाहिए कृष्ण के पास जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए। क्या है हम में इतनी तीव्रता? नहीं। और हम अपने आप को भक्त मानते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, हम भक्त हैं। इसे कहा जाता है भक्त, जो कृष्ण से मिलने के लिए, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए अपना सब कुछ, सारे कर्तव्य एक बार छूट जाए, सब लोग समाज से एक बार निकल जाए। अब देखिए, गोपिया ने मन में यह नहीं सोचा होगा कि अगर हम अपने पति को यह सब छोड़कर चली जाए तो समाज हमें रखेगा या नहीं, लेकिन सबकी परवाह किए बिना कृष्ण से मिलने चली गई। सिद्धांत दे रहा हूं एक आपको, देने की इच्छा तो नहीं थी लेकिन दे रहा हूं। जब हम भजन करते हैं, कोई कहता है आप भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, तो हम कहते हैं समाज क्या कहेगा, क्या कहेगा समाज कि सब कुछ छोड़कर बैठ गया, हमारे बॉस क्या कहेंगे, हमारे सेठ क्या कहेंगे, अरे हमारे भाई क्या सोचेंगे, अरे हम तिलक और कंठी पहनेंगे, हमारे चाचा क्या कहेंगे। भाड़ में गया वो समाज जो भजन करने में बाधा देता है। भगवान राम के भाई हुए भरत, और जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हो गया और भरत जी जब आए, पता चला भगवान श्री रामचंद्र को भेजा गया है माता के द्वारा, माता को बहुत डांटा, कैकेयी को कह दिया कि तुम मुझे मां मत कहना। बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं भरत। तुरंत माता को आकर कहा, यह तेरा ही छल कपट है, आप कहना भी छोड़ दिया, तू से बात प्रारंभ की कि हे कैकेयी, ये तेरा ही कपट है, तूने ही मेरे भाई को, मेरे प्रभु को वन में भेजा है, और आज से तू मेरी माता मिट गई, तू मेरी मां नहीं है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। मान लो कैकेयी ने कहा, तुम यह नहीं जानते अपनी माता को माता न मानना नरक में वास होता है, नरक में जाना पड़ता है अगर कोई अपनी माता को माता न कहे। भरत कहते, मैं हजारों हजारों बार नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो व्यक्ति मुझे राम से अलग करता है उसके साथ में बात तक नहीं करूंगा। लेकिन हम तो उसी के साथ बात करने में आनंद लेते हैं, वो क्या सोचेंगे। अरे ऐसे लोगों के लिए हजार बार नरक में चला जाए, हजार बार गाली भी खा ले, तो एक बार खा लेना चाहिए राम से, कृष्ण से अलग होने के। और भरत ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं राम को मिलने के लिए। सारे वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम अब गाली संभालो अयोध्या की, राम जब तक आए तब तक। तब भरत जी कहते, नहीं मैं नहीं संभालूंगा, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते कि मैं कभी भी अयोध्या की गादी को नहीं संभाल सकता। और आप देखो, जब मैं इस गादी को लूंगा, जब इस पर बैठूंगा, तब ये पृथ्वी कांपने लगेगी, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो मुझ पर विश्वास करो, और मैं तो जा रहा हूं राम से मिलने के लिए, आपको चलना है तो चलो। तो कुछ लोग ने कहा, हमारे घर बार वाले क्या कहेंगे। तब भरत जी ने कहा है कि जर उस संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, अगर वो घर तुम्हें बाधित कर रहा है राम से, कृष्ण से मिलने के लिए, तो जर उस जला दो उस घर को। अगर संपत्ति बाधित करती है भगवान से मिलने के लिए, अरे ये धन कौन संभालेगा, अरे धंधा कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा, हम भक्ति करेंगे तो भरत कहते हैं कि जला दो उस धन को जो धन कृष्ण से मिलने के लिए बाधा कर रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के मिलने के लिए बाधा कर रहे हैं। कुछ कहने लगे, हमारे स्वजन क्या कहेंगे, वो रोक रहे हैं। तो कहते, जरूसु संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सबको जला दो, सबको छोड़ो और चलो मेरे साथ राम को मिलने के लिए। और सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहज सहाय, अगर कोई रामचंद्र को, प्रभु श्री राम कृष्ण को मिलने के लिए सहज कोई कार्य नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो वह तो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। धर्मे नवहीन पशु भेर समाना, वो पशु से भी गया गुजरा है, पशु भजन नहीं करता है क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। हम में तो है बुद्धि, और बुद्धि होने के बाद, इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी अगर भजन नहीं करते तो यह जीवन बेकार है, पशु से भी गया हुआ है। तो कृष्ण को मिलने के लिए गोपियां कुछ नहीं देख रही है, क्या बाधा है, क्या है। लोक लज्जा को छोड़कर बंसरी का नाद सुनकर, बंसरी की नाद में इतनी आनंद है, सब चले गए। तो मैं कहने का तात्पर्य यह था, कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो बहुत ही सुंदर आनंद आता है ब्रजवासियों को। तो राधा रानी एक बार कृष्ण के पास आई, हमारी मान लीला चल रही थी, सब लोग सीरियस हो गए अब थोड़ा। तो राधा रानी बंसरी लेकर कृष्ण के पास आई और कहने लगी, कृष्ण तुम जब बंसरी बजाते हो हमें बहुत आनंद आता है, तो तुम मुझे बंसरी बजाना सिखाओ, मुझे बंसरी बजाना सिखाओ। कृष्ण ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिखा देता हूं। लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें बंसरी बजाना सिखा दूंगा तो आप भी मुझे एक चीज सिखाओ। राधा को कहा कि तुम भी मुझे एक चीज सिखाओ। तो राधा रानी ने कहा, तुम्हें क्या सीखना है? कृष्ण ने कहा, मैं सर्व कला विशारद हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन ये जो तुम मान करती हो, ये मान करना मुझे नहीं आता है, तो तुम मुझे मान करना सिखाओ, मैं तुम्हें मुरली बजाना सिखाऊंगा, दोनों एक दूसरे के गुरु बन जाते हैं। तो राधा रानी ने कहा, ठीक है, ओके। तो कृष्ण ने कहा कि बंसरी बजाना बहुत सरल है, छह छिद्र होते हैं, कैसे सारे गामा पादन ऐसा करना है, किस प्रकार राग रागिणी, मैं तुम्हें तुरंत आधे घंटे में सिखा दूंगा, लेकिन ये जो मान करना है इसके लिए बहुत टाइम टेकिंग मैटर है, बहुत समय लगेगा, इसलिए मान करना तुम मुझे पहले सिखाओ। तो राधा रानी ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखा देती हूँ। तो राधा रानी अब नियम बता रही है कि जब कोई मान करता है तो मान करने वाले व्यक्ति को जिससे मान करता है उसके सामने देखना नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा, ठीक है। राधा रानी कहा, ठीक है नहीं, ये थियरी हुआ, प्रैक्टिकल करो, जब प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे तब आगे बढ़ेंगे। तो कृष्ण ने, राधा रानी कहा, ठीक है, थोड़ी दूर जाकर बैठो और मैं परीक्षा लेती हूँ तुम्हारी। तो कृष्ण तो मुड़ कर बैठ गए। तो अब राधा रानी परीक्षा ले रही है, कृष्ण हे प्रिय, कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण देखकर कहा, जी राधे। राधा रानी कहने लगे, फेल हो गए थे, बिल्कुल बेकार स्टूडेंट हो तुम पढ़ने में बेकार हो, तुम ये नहीं सीख पाओगे। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, प्रयास तो करो। राधा रानी ने कहा कि किसी से मान करते हो तो मान करने वाले के सामने देखना भी नहीं और उसका सुनना भी नहीं है, तो ठीक है, अब प्रैक्टिकल करो। तो कृष्ण फिर से वहां जाकर बैठ गए उल्टे घूमकर, और राधा रानी कहने लगी, कृष्ण कृष्ण हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, एक बार दो बार प्रिय प्रिय, अब तीन बार नहीं झेल सके, तीन बार नहीं सह सके, तीसरी बार जब राधा रानी ने कहा हे प्रिय, तब कृष्ण ने कहा, जी राधे। राधा रानी ने कहा, बेकार स्टूडेंट मिल गया है मुझे, ये शिष्य भी कितना बेकार मिला है मुझे। कृष्ण ने कहा, अब मैं ठीक से करूंगा, एक बार लास्ट बार आप ट्रेनिंग दे दो। तब और घूम कर तीसरी बार बैठे कृष्ण, और यहाँ पर राधा रानी बुला रही है, कृष्ण कृष्ण, अब की बार कृष्ण नहीं देख रहे। तो एक बार नहीं देखे, दो बार नहीं देखे, पांच बार, दस बार, पंद्रह बीस बार जब नहीं देखे, राधा रानी बोलती रह गई, कृष्ण हे प्राण प्रिय, देखो देखो, मैं राधे, मैं तुम्हारी प्रिया बोल रही हूँ, मेरे सामने देखो, मेरी ओर देखो। कृष्ण नहीं देखे, और राधा रानी को लगा कि कृष्ण सचमुच मान कर लिए। और जैसे ही राजा रानी को भ्रांति हुई कि कृष्ण ने मान कर लिया है, अब कृष्ण कभी भी मेरे सामने नहीं देखेंगे, कभी भी कृष्ण मेरे साथ नहीं बोलेंगे, तुरंत मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण ने कहा, ये लो, गुरुजी ही बेहोश हो गए। ये क्या हमें सिखा रहे थे और कह रहे थे बिल्कुल गलत चेला है, जब अव्वल नंबर का चेला बना तब गुरुजी ही बेहोश हो गए। अब तो कृष्ण ने अपनी मुरली से वहां पर एक खड्डा किया और उस खड्डे से पानी निकाला, और पानी निकालकर राधा रानी के ऊपर छिड़कने लगे और कपड़ा से हवा डालने लगे। तब राधा रानी की धीरे धीरे, कृष्ण बोलने लगे, राधा मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं नहीं मान किया हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो बात करो बात करो। तब राधा रानी थोड़ी आंख खोलती है और आंख खोलकर बैठती है, मैं क्या समझी कि आप तो सचमुच मान कर लिए थे, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं गिर गई। तब कृष्ण ने इतना ही कहा कि राधे, मैं एक बार और पांच मिनट के लिए भी तुमसे मान किया, तुम मूर्छित होकर गिर गई, तुम दिन में पचास पचास बार मान करती रहती हो, मेरी क्या हालत होती होगी। तो इस प्रकार मान करना और मनाना, इस प्रकार राधा और कृष्ण के बीच में लीला होती थी, और होते होते राधा रानी अब बड़ी हो गई और विवाह करने की उम्र राधा रानी की आ गई। और कृष्ण तो छोटे थे राधा रानी से, और राधा रानी का विवाह अयन घोष अभिमन्यु ग्वाल के साथ करवा दिया गया। अब ये भी एक बाहरी विवाह था, इसी को ही प्रकट करने के लिए आगे कथा आएगी, लेकिन बाहर की बाहरी दृष्टि से राधा रानी का विवाह अयन घोष अभिमन्यु, वो अभिमन्यु नहीं अर्जुन का पुत्र है, ध्यान रखिए, अभिमन्यु एक ग्वाल बाल था, तो उस अभिमन्यु के साथ राधा रानी का विवाह हो गया। और विवाह करके राधा रानी अभिमन्यु के साथ रहने लगी। तो कृष्ण का और कृष्ण की जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, तो कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम है उसे परकीय भाव कहते हैं, स्वकीय और परकीय। थोड़ा तत्व का सिद्धांत है, समझ लेना चाहिए। तो गोपियां परकीय भाव का अर्थ होता है कि राधा और जितनी भी गोपियां हैं संबंध में कुछ नहीं है कृष्ण की, और किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, लेकिन राधा और सारी गोपियां ही कृष्ण के लिए प्राण है। राधा और कृष्ण का कुछ संबंध नहीं है देखा जाए ऐसे उस भौतिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी राधा का जीवन ही कृष्ण है। राधा कृष्ण राधा के लिए और राधा कृष्ण के लिए, इसे परकीय भाव कहते हैं। और यही परकीय भाव का रसास्वादन करने के लिए राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ भगवान की ही सब योग से हो गया। लेकिन विवाह होने के बाद भी कृष्ण अपनी लीला बंद नहीं करते थे फिर भी कैसे भी करके छिप कर, कैसे भी करके कृष्ण राधा से मिल लिया करते थे। तो आइए एक लीला यह भी कह दूं। अब राधा रानी का तो विवाह हो गया था, तो एक दिन की बात, अभिमन्यु राधा रानी का पति एक दिन यशोदा मैया के घर पे बैठने के लिए आया प्रसाद लेने के लिए। तब यशोदा मैया एक पटेरे में बहुत कुछ बांध रही थी, उस पटेरे में डाल रही थी, उस पटेरे चंदन कपूर पदम पद्मराग कस्तूरी कुमकुम कंगन कुंडल रत्न अलंकार ये सब कुछ उस पटेरे में भर रही थी। बहुत बड़ा पटेरा था, गांव में होता है अगर आपने देखा होगा तो। उस पटेरे में राधा रानी सब यशोदा मैया भर रही थी बहुत सुंदर सुंदर अलंकार और चंदन और कान में पहनने का, नाक में पहनने का, गले में पहनने का सब आभूषण सब कुछ डाल रही थी। तो उतने में कृष्ण वहां पर आए और यशोदा मैया से कहने लगे कि मैया ये क्या कर रही हो तुम, ये सुंदर सुंदर चीज किसके लिए भर रही हो। तो कृष्ण ने कहा यह मेरे लिए है। यशोदा ने कहा नहीं। तो कृष्ण ने कहा यह बलदेव भैया के लिए यह होगा। राधा रानी ने कहा नहीं। तो कृष्ण ने कहा ये किसके लिए ये सब कर रही हो तुम, इतने सुंदर सुंदर अलंकार इतनी इतनी सुंदर कीमती चीज इसमें डाल रही हो। तब यशोदा मैया ने कहा कि यह तो अभिमन्यु आया है, और अभिमन्यु की जो पत्नी है राधा, इसी के कारण सारे ब्रज में सब लोग सुखी हैं और सब लोग रह रहे हैं। तो उस राधा के लिए मैं गिफ्ट उपहार में यह सब एकत्रित कर रहे हूँ, ये सब राधा के लिए है। कृष्ण ने कहा ऐसा है। तो कृष्ण को पता चल गया है राधा के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो उतने में यशोदा मैया के घर पे एक सोनी, जो सोने के अलंकार बनाता है, वह सोनी आया। और आया तो एक दासी जिसका नाम था लवंगता दासी यशोदा मैया के पास आई और कहने लगी कि आपने जिस सोनी को बुलाया था, सोनी को इसलिए बुलाया था कृष्ण के लिए सब कुछ बनाना था, कुंडल और गले में सब कुछ चैन पहनने का, तो वह आया है, आप उसे मिलिए। तब यशोदा मैया ने कहा हे लवंगता तुम यहाँ पर रहो और इसका ध्यान रखना, इसमें कीमती चीज है इसलिए इसका ध्यान रखो, मैं उस सोनी को मिलकर आती हूँ। तब लवंगता ने कहा ठीक है मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगी, आप जाओ। और कृष्ण वहां पर खड़े थे, तो उस वक्त कृष्ण के सारे गोप ग्वाल वहां पर आए और लवंगता को थोड़ी घूस देकर वहां से रफू चक्कर करवा दिया। और सारे गोप ग्वाल सखा ने उस पेटी में जितनी भी चीज थी वो सब बाहर निकाल दी और एक पोटली में भर लिया और उसे किसी के घर पे जाकर छिपा दिया और इस पेटी में कृष्ण को अंदर बिठा दिया और वहां पर ऊपर से थोड़ा कपड़े डालकर उस पेटी को बंद कर दिया। और यशोदा आई, सब देखा कि पेटी जैसी थी वैसी ही है। और अभिमन्यु जब जा रहा था तब यशोदा जी ने कहा कि यह पेटी लेकर जाओ, ये राधा के लिए मैंने इसमें उपहार रखा है, बहुत ही सुंदर सुंदर अलंकार है, तुम राधा को दे देना। और अंदर अलंकार तो निकल गए थे, कृष्ण थे उस पेटी में। तो अभिमन्यु तो बहुत खुश हो गया कि बहुत सुंदर उपहार यशोदा मैया के द्वारा मिला है। तो उसने वो पेटी ली और उस वक्त तो ऐसे कुछ गाड़ी या रिक्शा तो नहीं थी, अपने सिर पर वो पेटी, इतनी भारी पेटी रखा। तो लिखा है रूप गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, चूंकि अभिमन्यु को लग रहा था कि इसमें बहुत अलंकार होंगे, राधा खुश हो जाएगी, इसलिए इसी उत्साह में उसे यह वजन महसूस नहीं हुआ। वास्तव में वजन बहुत था और कृष्ण का वजन जो पूरे ब्रह्मांड को उठा कर रखे। लेकिन उत्साह में उसने उठा लिया और रास्ते में यही स्मरण करते थे कि मैं घर पर पहुंचूंगा और मेरी माता जटिला, माता का नाम, अभिमन्यु की माता का नाम जटिला था और अभिमन्यु की बहन का नाम कुटिला था, तो जटिला कुटिला और राधा खुश हो जाएगी। और इसी के साथ अभिमन्यु बहुत दूर चलते चलते अपने घर पहुंचा और घर पे जाकर वो पेटी रखी और अपनी माता को कहा, मैया देखो मैं क्या उपहार लेकर आया हूँ। मैंने कहा ये क्या है, जटिला ने पूछा। तो अभिमन्यु ने कहा यह यशोदा जी ने यह उपहार दिया है आपको राधा के लिए। तो जटिला ने कहा ठीक है, यह तुम राधा के रूम में ही रख दो और राधा को सरप्राइज दो, राधा जब इसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। तो राधा अपने रूम में, अपने कमरे में थी अपनी सखिया के साथ और अभिमन्यु उस पेटी को लेकर वहां राधा रानी के सामने रख दिया और अभिमन्यु वहां से बाहर चला गया। और राधा रानी पूछ रही है सारी सखी को, हे सखी ये पेटी में ऐसा क्या है, जब से यह पेटी इस रूम में आई है मेरा मन विचलित होने लगा है। तो चलो चलो देखती है, सब गोपियां उसकी उस पेटी के आजू बाजू में खड़ी रह गई और राधा जी ने वो ताला खोला और खोल कर जैसे ही वो पेटी खोली तो अंदर से बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा था और देखा वो कौन है अंदर तो सारी सखियां विस्मित हो गई और बिल्कुल अवाक हो गई। और आश्चर्य की बात यह है कि सारी सखियां इसे स्तब्ध जब हो गई तब कृष्ण ने बाहर निकलकर सभी गोपियों को चुंबन कर लिया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
राधा रानी और सखिया कुछ देखे कुछ बोले, उसके पहले तो कृष्ण ने सबको चुंबन कर लिया और बैठ गए। तब राधा रानी बहुत गुस्से हुई, तुम्हारी यह जरूरत तुम यहाँ पर आओ और इस प्रकार की, क्योंकि मान लीला चल रही थी, मैं अभी जाकर मेरी सास को बता देती हूँ कि तुम यहाँ पर कपट करके यहाँ पर आए हो और ये सब किए हो। तब सखियों ने रोका, इस प्रकार मत कीजिए और इस प्रकार से ये जो मान था यहाँ पर, इस मान का अंत आया और प्रभु जी की इच्छा है कि हम भी यहाँ पर इस प्रवचन को रोके। आगे बहुत सारी लीला है, अब यह कृष्ण जगन्नाथ कैसे बनेंगे यह तो बाकी रह गया, तो क्या करेंगे, और एक सेशन रखना है, आज बताना है क्या करना है। प्रभु जी की ऐसी इच्छा है कि सब लोग प्रसाद ले लेंगे और प्रसाद लेने के बाद सुनेंगे, ताकि जो थकावट है, पैर दुख रहा है, वह भी ठीक हो जाए। तो ऐसा करना है, सबकी इच्छा क्या है? परीक्षित महाराज याद आते होंगे। अगर प्रसाद लेने के बाद आप लोग यहाँ पर बैठे फिर भी कलयुग के परीक्षित माने जाओगे, प्रसाद लेने के बाद भी बैठेंगे और सुनेंगे, सोएंगे नहीं, तो भी अच्छा है हमारे लिए, यह भी परीक्षित महाराज का गुण है। तो ठीक है, प्रसाद ले लेते हैं और बाद में, बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत ही सुंदर इसमें कीर्तन है आएगा आगे, तो कृपया करके प्रसाद लेकर आप श्रवण कीजिए, सुनिए और किस प्रकार जगन्नाथ जी प्रकट हुए हम आगे चलकर ये सुनेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। कृष्णा कहाँ पर बैठेंगे प्रसाद लेने? यहाँ पर ही बैठेंगे, ठीक है। तो सब लोग खड़े हो जाइए और यहाँ पर लाइन करके बैठ जाइए सब लोग। स्टॉप कर लो। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने
नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पुनः आपका स्वागत है डायमंड मार्केट में डिमांड आने पर जैसे चाणी मारते हैं वैसे लग गई है रिजेक्शन निकल गया है खैर सबकी अपनी अपनी कुछ कैपेसिटी होती है और हम तो कैपेसिटी को पार कर चुके हैं लेकिन हम इसमें ही मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि 45 मिनट का प्रवचन होना चाहिए, जल्दी खत्म करना चाहिए, ये नियम है, विधि है। लेकिन देखिए, हम जिसका भजन कर रहे हैं इसने कोई विधि नहीं रखी जिसका भजन करते हैं कृष्ण ने कोई विधि नहीं रखी, गोपिया ने कौन सी विधि का पालन किया? तो हमारा भी स्वभाव कुछ इस प्रकार का ही बन गया है, बोलते रहते हैं। भगवान अपने प्रेम के वश में होकर अपना सारा नियम तोड़ दे दिया करते हैं। आप सब जानते होंगे भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कुरुक्षेत्र की भूमि में शस्त्र नहीं चलाएंगे, लेकिन अपने भक्त को दुखी देखकर, अपने भक्त की मृत्यु नजदीक आ गई यह देखकर भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने प्रतिज्ञा ली रखी थी कि कुरुक्षेत्र की भूमि में मैं कभी अस्त्र नहीं चलाऊंगा, लेकिन गीता में कहा है, वो कुछ दिन पहले ही कहा था गीता में उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में कि न मैं भक्ता प्रणश्यति। अब एक बाजू भक्त की रक्षा है और एक बाजू अपनी प्रतिज्ञा है, तो कृष्ण अपने भजन करने वाले के लिए, कृष्ण अपने प्रेमी के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त का रक्षण करते हैं। नमे भक्ता प्रणश्यति कहते, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, अगर हम कृष्ण से प्रबल प्रेम रखेंगे, दृढ़ भक्ति रखेंगे, तो प्रभु अपना नियम भी बदल देंगे। भक्ति अगर कोई भजन करने लगता है तो भगवान अपना नियम बदल देते हैं। आपको पता होगा उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में अभिमन्यु का वध किया था जयद्रथ ने, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल शाम तक इसे मैं नहीं मारूंगा तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। तो जयद्रथ किसी पाताल में, काल कोठड़ी में जाकर छुप गया, अर्जुन ढूंढ नहीं सका। अंत में संध्या हो गई और अर्जुन समाधि अर्थात आत्महत्या करने ही वाला था। तब जयद्रथ ने सोचा, चलो दुश्मन की मृत्यु देखनी चाहिए, इसमें तो आनंद है। तो जयद्रथ आया देखने के लिए कि किस प्रकार अर्जुन आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि संध्या हो चुकी थी। तो जयद्रथ अभिमन्यु के सामने है और ठठाकर हंस रहा है, लेकिन तभी भगवान ने अपनी लीला प्रकट की कि जयद्रथ को, सब लोग को लग रहा था कि 6 बज गए, सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन दिन के 2 बजे थे। भगवान ने सूर्यदेव को आदेश दे दिया था कि थोड़ी देर के लिए यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। तो ये है सूर्यदेव का नियम है, भगवान का नियम है कि सूर्यदेव को पूर्व से उगाना, पश्चिम में डुबाना, और सुबह उगाना, शाम को डाल देना। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु ने नियम बदल दिया सूर्य का, कि कुछ घंटों के लिए अस्त कर दिया। और अपना मान टले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपनी प्रतिज्ञा टूट जाए टूट जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु अपने आंख से अपने भक्त का मान टलते नहीं देख सकते। गुजरात में आप गुजराती हो, यहाँ पर नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा। नरसिंह मेहता ने हुंडी ले रखी थी और गए थे द्वारका, जिसने हुंडी रखकर नरसिंह मेहता के पास, तो नरसिंह मेहता, साधु का स्वभाव होता है दान करना, तो ब्रह्म भोजन करवा दिया नरसिंह मेहता ने। तो यहाँ पर तो वो पैसे धन स्वाहा हो गया, और वहां पर द्वारका में ढूंढ रहे हैं नरसिंह मेहता ने जिस शामलसा सेठ से यह हुंडी या धन एकत्रित करने के लिए कहा था, वह शामलिया तो मिल ही नहीं रहा है। पूरी द्वारका की गली गली छान वाली, लेकिन शामलसा सेठ जो नरसिंह मेहता ने नाम दिया था, जैसे हम डायमंड में देते हैं कि आप यहाँ पर पैसे डाल दो आंगड़िया में, भावनगर यहाँ से ले लेना या अहमदाबाद से ले लेना, तो वैसा ही पहले इस प्रकार का होता था। तो नरसिंह मेहता ने जिससे लेने के लिए कहा था वो तो मिले ही नहीं, तो बहुत ढूंढे बहुत ढूंढे, अंत में वो जो व्यापारी थे पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे, ये नरसिंह मेहता ने हमें आज हमारे साथ धोखा दगा किया है। तो अपने भक्त की लाज रखने के लिए श्यामल शाह सेठ भगवान श्री कृष्ण सेठ बनकर उसके सामने आए और दे दिया धन। तो प्रश्न पूछा सब लोगों ने कि हम इतनी देर से आपको ढूंढ रहे थे, तो आपने दर्शन क्यों नहीं दिया, और अब जब हम नरसिंह मेहता को ये गाली दे रहे हैं, ये सब कह रहे, तब आप आए। तब इतना ही कहा उस श्यामल शाह सेठ ने कि जो व्यक्ति धन को ढूंढता है, जो धन के पीछे पड़ा रहता है, उसको मैं दर्शन नहीं देता हूं। ये तो नरसिंह मेहता की कृपा समझो जिसके कारण मैं तुम्हारे सामने आया हूं। बाकी धन के पीछे जो पड़ा रहता है वो तो भूल जाइए, जिसे उसे भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। तो संसार में देख रहे हैं सब लोग धन के पीछे सुबह से शाम तक, बस जीवन का लक्ष्य ही बना लिए हैं कि धन कमाना, धन हो जाए, मार्केट में किसी का पैसा उधार ना हो और हमारा पैसा कोई ले न जाए, हम सेफ हो, बस यही है सर्व सिद्धि। इतना हो गया बस, और कुछ नहीं। हमारे पास धन है और किसी को लेना देना कुछ नहीं है, हम सेफ है, हमारे पास भोग इत्यादि सब कुछ है, गाड़ी बंगला है, हमारे पुत्र भी ठीक है, और पुत्र भी ऑफिस से टाइम पर आ रहा है, वो भी कोई गलत नहीं है, तो बस हम ओके, हम व्यापार में सर्वश्रेष्ठ है। ये गलत बात है, जीवन इसके लिए नहीं मिला है, जीवन मिला है भजन करने के लिए। अरे धन तो वेश्या के पास भी होता है, धन कोई बड़ी चीज नहीं है, और धन जो है हमारे कर्म के अनुसार मिलता है, फिर भी लोग मेहनत करते हैं। यहां से किसको धीरू भाई अंबानी नहीं बनना है, किसको धन नहीं चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बनना चाहता है, लेकिन बन सकते हो? रोज मन में संकल्प करते ही ये धंधा ये सब डायमंड बिक जाए, लेकिन बिकता है? तो मान लेना चाहिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और कुछ कोई दिन ऐसा आता है जहां पर डिमांड हो या ना हो अचानक बिक जाता है बिना मेहनत के। तो मानना चाहिए ये हमारी शक्ति नहीं है, ये हमारा कर्म है, गत जन्मों में हमने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाकर ये हो रहा है। तो यह सब कर्म पर छोड़ते हुए हमें भजन करना चाहिए, जैसे हमारे आदर्श आचार्यों ने किया है। अभी मैं उस समय प्रभु प्रसाद ले रहे थे, बता रहा था हम क्या भक्ति कर रहे, भक्ति तो की रघुनाथ दास गोस्वामी ने, हम क्या छोड़ रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारी परंपरा में एक आचार्य हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी को महीने की इनकम आप कल्पना नहीं कर सकते, उस वक्त आज से 500 साल पहले 8 लाख सोने के मोहर प्रति महीने व्हाइट उसके घर पे आ जाते थे। 8 लाख रुपए भी अगर हमें आ जाए तो हम शांति से पड़े रहेंगे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो अकेले वारिशदार थे, ऐसे भी नहीं थे कि 8 लाख उसे बांटना पड़ता था अपने भाई में, एक ही लड़का एक ही वारिशदार था रघुनाथ, और 8 लाख सोने की मोहर उसे हर महीने मिलती थी। और इतना ही नहीं, उसकी पत्नी स्वर्ग की अप्सरा जैसी पत्नी उसके पिता ने लाकर दी थी, और इंद्र की समान भोग था, सब कुछ था, लेकिन त्याग दिए सबको। जैसे हम टट्टी करने के बाद विष्ठा को नहीं देखते हैं, ठीक उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी इस भोग को नहीं देखा, मलवत त्याग दिया और भजन में लग गए। वही रघुनाथ दास गोस्वामी महीने महीने तक कुछ नहीं खाते थे, छांस पीकर अपना जीवन बिताते थे। इसे कहा जाता है भजन, इसे कहा जाता है त्याग। हम क्या त्याग करते हैं? अरे जेब से 10 रुपया अभी मंदिर के उसमें डालना हो तो 100 बार सोचते हैं। हालांकि देने वाला भगवान ईश्वरी है, वही हम सबको सब दे रहा है। अब आप कल्पना कीजिए 5 मिनट के लिए वह देने वाला यह हवा बंद कर दे, ऑक्सीजन बंद कर दे, कोई रह सकता है? आप हॉस्पिटल में जाइए तो ऑक्सीजन का जो बॉटल होता है कितने का मिलता है, आप जरा लगाइए भाव। लेकिन वही ऑक्सीजन भगवान हमें हजारों साल से, हम जब से पैदा हुए तब से फ्री में दे रहे हैं। कभी आपको आकर कहा कि बिल लाइए? वही हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जीवन में एक बार सोचते तक नहीं है कि ये देने वाला इतना कुछ दे रहा है, मैं उसके लिए कुछ करूं, नहीं सोच रहे। अरे हम ट्रेन में जाते हैं, किसी से कुछ कार्य कुछ लिख, फोन नंबर लिखने के लिए पेन मांगते हैं, तो पेन वापस लौटाते वक्त हम थैंक यू कहते हैं। वैसे तो हम अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत अच्छे सभ्य हैं। अरे किसी का पेन लिया और पेन थोड़ा सा लिखकर एक नंबर लिखकर वापस लौटाते तो थैंक यू कहते हैं, तो ये बेचारा भगवान देने वाला इतना कुछ दे रहा है। ये शरीर भी भगवान ने ही दिया है, समझो माता पिता के द्वारा नहीं है, क्योंकि माता पिता अंदर हाथ डाल के नहीं खिला रहे थे पुत्र को, वो भगवान ही उसकी व्यवस्था कर रहे थे। तो सब कुछ शरीर भगवान की देन है, सब कुछ भगवान ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उस भगवान को थैंक यू तक कहने का समय नहीं है, और सब समय है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और हमारे जीवन में बहुत बड़ा भय लगा है मृत्यु का। यह सब तैयारी हमें मृत्यु के लिए ही करनी है, लेकिन उस मृत्यु के लिए तो कोई सोच नहीं रहा है। सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे, हमारे पास धन आ जाएगा, हम अमेरिका जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे, हम अच्छी पत्नी लाएंगे, अच्छे बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जीवन में कुछ नहीं होता है। जो नहीं होता है उसके लिए हजारों हजारों बार हम प्लान मारते, रोज सुबह उठकर यही प्लान से जाते हैं ट्रेन से कि आज कमा लेंगे, आज कमा लेंगे, आज सुखी हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बहुत कटु शब्द में तात्पर्य में लिखते हैं कि आप अमेरिका जाओ या ना जाओ, आपको जाने मिले या ना मिले, आप करोड़पति बनो या ना बनो, आपको अच्छी पत्नी मिले या ना मिले, लेकिन मृत्यु तो आपके जीवन में जरूर आएगा, आएगा और आएगा। और जो चीज जीवन में आने वाली है उसके लिए व्यक्ति सोचता नहीं है, और जो नहीं आने वाला है, जो कभी अमेरिका नहीं जाने वाला, उसके लिए पूरा दिन प्लान मारता रहता है। जो कभी करोड़पति नहीं बनने वाला उसके लिए गधे की तरह मेहनत करता है। लेकिन यहां जो आने वाला चीज है मृत्यु, कभी भी आ सकती है, उसके लिए कभी नहीं सोचता है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर सोचने लगे कि मृत्यु आने वाला है और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, तो जीव भजन कर सकता है। ये संसार जब दुखालयम अशाश्वतम महसूस करने लगे तब ही व्यक्ति भजन कर सकता है, नहीं तो इस संसार में पड़ा रहेगा। वास्तव में संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन रजोधिका कर्मोपरा दुखे च सुख मानिना, बुद्धि इतनी डल हो गई है कि इस दुखों के संसार में, जो दुखों का सागर है, जैसे सागर समुद्र में पानी के अलावा कुछ नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए ध्यान से, दुख के अलावा कुछ है इस संसार में? जब से जन्म लिए आज तक आप ऐसा हुआ है कि दुखी नहीं रहे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि देविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक सब कुछ लेकर दुखी है, दुखी है, दुखी है, लेकिन ऐसी दुखी स्थिति में, ऐसे दुख के सागर में रहकर भी सोचता है कि मैं सुखी हूं। ऐसे मूर्खों के सरदार का क्या किया जाए? लेकिन जब जीव सोचने लगे कि वास्तव में दुखालय में शाश्वत में संसार दुखालय है, इसमें दुख के सिवा कुछ नहीं है, सुखी होना है, भगवान के धाम में वापस जाना है, तब इस प्रकार के सत्संग में आ सकता है। नहीं तो जिसको इस संसार में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, जो भोग भोग रहे, उसके लिए तो एक भक्त ने बहुत सुंदर लिखा है, मुसलमान भक्त हो गए, लिखा है कि आशिक को तो अल्लाह न दिखाए बुढ़ापा। जो इस संसार का आशिक है, जो इस संसार में आनंद ले रहा है, ये भगवंत मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भोगी को कभी बूढ़ा मत बनाना। अगर बूढ़ा बनाओगे तो ये मरेगा तो नरक में जाएगा, उसे अच्छा इसी संसार में रखो, बूढ़ा मत बनाओ। भगवान मेरी आपसे एक विनंती है, तो जो इस संसार का आशिक है, इस संसार में रस आनंद ले रहा है, क्या आनंद है इस संसार में बताओ, इस संसार में कितना आनंद है? वास्तव में इस संसार में आनंद नहीं है। कभी कभी दुखालय मशाश्वतम, हम दुख के सागर में हैं, और दुख के सागर से दुख मिलना थोड़ा कम हो जाता है, बंद तो नहीं होता, थोड़ा कम होता है, तो हम सोच लेते हैं हम आनंदित सुखी हो गए, लेकिन पता नहीं दुख बंद हुआ है, सुख तो मिला ही नहीं है, सुख तो मिलने वाला ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझिए, मानिए आपको चर्च गेट से बोरीवली आना है और आंख बंद करके ट्रेन से में चढ़ गए, और चढ़ने के बाद पता चला ये तो विरार का ट्रेन है, और बराबर बीच में पहुंच गए। अब इतना भीड़, दादर वाले यहां से दबाते हैं, बांद्रा वाले यहां से दबाते हैं, और बीच में बिल्कुल ये चटनी बन जाता है, और सांस भी ठीक से, गर्मी का मौसम है, पसीना पसीना बास आ रहा है सब कुछ, उसमें ट्रेन लेट है मान लीजिए डेढ़ घंटा तो बेचारा नर्क से ज्यादा उसकी पोजिशन नहीं है अच्छी, तो वो दुखी हो जाता है, पूरा नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल दुखी हो जाता है। और फिर जब बोरीवली आता है तब बेचारा कोई उतरने नहीं देता उसे, तब क्या करे, दहीसर तो उतरना होगा, तब कैसे भी करके दहीसर में, दहीसर जब आता है तो धक्का मार कर कितना जोर लगा कर, अब किसका गाली खाकर, 50 लोगों का तो गाली खाता है बोरीवली वाला इसमें चढ़ा तो गाली खाते हुए, धक्का खाते हुए, पसीना गर्मी ये सब करके, और ट्रेन से कैसे भी करके वो भी कोई धक्का देता है और बाहर निकलता है, तब दहीसर स्टेशन पर आज तो मैं आनंदित हो गया। क्या वो आनंद है? बस ये सुख है हमारे जीवन में। दुख मिल रहा था, दुख मिल रहा था, तो दुख से थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो सोचने लगे हम तो बस परम ब्रह्मानंद मिल रहा है, ये ब्रह्मानंद नहीं है ये दुख से निवृत्त हुए हैं, और वो भी टोटली निवृत्त नहीं, अब तो रिक्शा पकड़ के बोरीवली जाना होगा तो ये शास्त्र में दृष्टांत देते हैं कि बस इस संसार का सुख इतना ही है, जैसे किसी व्यक्ति को सिर पकड़कर पानी में डुबाया जाए तो छटपटाएगा, बहुत ही कोशिश करेगा बाहर निकलने के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकालेंगे तो कहेंगे हा अरे भाई ये सुख नहीं है, ये तुझे दुख मिल रहा था तो थोड़ी देर के लिए वह दुख कम कर दिया गया, और तू मूर्ख इसे सुख मान रहा है। ठीक उसी प्रकार संसार में दुख मिल रहा है, हम दुख के सागर में पड़े हुए हैं, और कभी ये दुख मिलना बंद हो जाता है तो हम सोचते हैं हम सुखी हो गए, और उस सुख के लिए जो सुख नहीं है गधे की तरह मेहनत करते हैं, हम आज सुखी हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, लेकिन कभी होंगे नहीं। तो ये सब ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अक्सर ये ज्ञान प्रभुपाद जी के द्वारा विश्व व्याप्त है सभी जगह पर। तो पहले के जमाने में इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप देखिए कितने भाग्यशाली हो आप, इस कलयुग में रहकर आपके मोहल्ले में ऐसा ज्ञान मिल रहा है। आप कुछ समय पीछे जाइए, 500,000 वर्ष पहले बड़े बड़े राजाओं को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना होता तो वह घर छोड़कर, राजमहल छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना पड़ता था, और वहां जाकर ठीक साधु मिले तब इस प्रकार का ज्ञान मिलता था। जैसे पंचम स्कंद में राजा रघुगण की कथा आती है, ये भारत देश का सम्राट कपिल देव से ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़कर निकला, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे आचार्य की कृपा तो देखिए कि वही ज्ञान जो घर छोड़कर जंगल में जाकर मिलता था, वही ज्ञान हमारे ही देश में, हमारे ही शहर में, हमारे ही मोहल्ले में, हमारे ही घर में दे दिया है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है जीवों का कि इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। कितने दुख की बात है, वास्तव में हृदय में दुख और ग्लानी होती है जब इस प्रकार से हम देखते हैं। जीवन मिला है भजन करने के लिए, श्रवण और कीर्तन करने के लिए, और यही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। अगर आपके पास लाखों करोड़ों बैंक बैलेंस में हो और मृत्यु आ गई, क्या काम की? मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूं कि आपके आंगड़िया में करोड़ों रुपये हो, बैंक बैलेंस में लाखों रुपये हो, लेकिन जाओगे तो ट्रेन में, कितना भी रईस हो ट्रेन में गाली खाता है, भले फिर वहां जाकर बॉस की सीट पर बैठा हो, और घाटी होता है वो रईस को गाली देता है, ट्रेन में कोई किसी का सेठ नहीं, एक घाटी एक भिखारी ट्रेन में वो मालिक को गाली देता है, क्योंकि वो नहीं जानता कौन मालिक है क्या है, कोई कोई नहीं जानता, पिटाई भी हो जाती है कभी कभी। लेकिन कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपये हो, जाएंगे ट्रेन में, मान लीजिए यहाँ से फास्ट ट्रेन में बैठे बोरीवली से चर्चगेट जाने के लिए, चन्नी रोड के लिए, तो बोरीवली से अंधेरी के बीच में ट्रेन नहीं रुकती है, ध्यान है सबको, याद है पता है। तो मान लीजिए बोरीवली से बैठे ट्रेन निकली और कांदीवली आया और पता चला कि इस ट्रेन में बॉम्ब है, इस ट्रेन में बॉम्ब है और 7 मिनट में फूटने वाला है और 15 मिनट में ट्रेन अंधेरी रुकेगी, अब क्या करोगे? अब तो ट्रेन वो खींचने से भी स्टेशन पर ही रुकती है, रास्ते में नहीं रुकती, ट्रेन चल रही है 15 मिनट में खड़ी रहने वाली है और 7 मिनट में बॉम्ब फूटने वाला है, चलती ट्रेन से अगर नीचे गिरोगे तो भी मरोगे और ट्रेन में बैठे रहोगे तो भी बॉम्ब से मर जाओगे। अब मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मेरे बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए है, मेरे आंगड़िया में हजारों लाखों रुपए है, मेरी बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छा पुत्र है, बहुत अच्छे संस्कार है, आपको वहां पर कौन सा संस्कार, कौन सा धन, कौन सी पत्नी बचाने आएगी, बताइए। लेकिन अगर भजन किया है, भगवान का नाम लिया है, तो गीता में भगवान कहते हैं कि स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्, अर्जुन थोड़ी सी भी अगर कोई भक्ति कर दे तो बॉम्ब क्या बड़े बड़े भय से मैं मुक्त कर देता हूं, जैसे अर्जुन को किया। अर्जुन के सामने कौन था? अरे ये टाइम बॉम्ब और ये जो बॉम्ब है RDX बहुत छोटे हैं। अर्जुन के सामने भगवान के का भक्त हो गए अर्जुन, उसके सामने बड़े बड़े बॉम्ब टाइम बॉम्ब थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिसे शिक्षा सीखे थे, वो अपने गुरु सामने खड़े थे मारने के लिए, दुर्योधन और कर्ण, इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े टाइम बॉम्ब अर्जुन के सामने थे, लेकिन बाल भी नहीं तोड़ सके अगर वो कृष्ण की भक्ति कर रहा था तब। बड़े बड़े योद्धा, जैसे अब क्या कहूं, कर्ण का नाम आ गया है, अब लीला से जा रहे हैं, लेकिन सिद्धांत प्रभु जी की आज्ञा है। कितनी शक्ति रखते थे भगवान के भक्त अर्जुन के सामने लड़ने वाला, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अब देखिए कर्ण के जीवन में, कर्ण जब शिक्षा प्राप्त करने परशुराम के पास गया, तब परशुराम ने कहा आप कौन हो? तो कर्ण ने कहा मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, और परशुराम ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे। तो सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, सब कुछ ज्ञान विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन की बात, कर्ण परशुराम की गोद, परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तो उतने में एक कीड़ा आया और कर्ण की जांघ पर काट दिया और खून निकलने लगा, और धीरे धीरे वह खून बहने लगा और वह खून परशुराम जी को टच हुआ। तो परशुराम जी ने वह गरम गरम खून स्पर्श किया तो कहा कि उठ गए, और कहने लगे इतना कुछ लग गया, आपने मुझे बताया नहीं। कर्ण ने कहा कैसे बताता गुरु जी, आप सो रहे थे। तब परशुराम जी को थोड़ी बुद्धि आई कि क्षत्रिय में इतनी सहन शक्ति, ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती, सच सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण ने कह दिया मैं सूत पुत्र हूं, और परशुराम जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि कर्ण मैंने जितने भी विद्या सिखाई है, जब तुम्हें यह विद्या का काम आएगा एंड मौके पर तुम यह विद्या भूल जाओगे। तो इतनी बड़ी दुर्घटना कर्ण के जीवन में हुई थी। इतना ही नहीं, फिर कर्ण के पास 5 बाण थे, और 5 बाण उसने स्पेशल पांडवों को मारने के लिए ही रखा था कि ये 5 बाणों से मैं पांडवों को मारूंगा। कृष्ण को तो सब पता था, सब कुछ जानने वाले हैं, वेदे च सर्व अहमेव वेद। तो बताया महारानी कुंती को कि आप जाओ और कर्ण से 5 बाण ले लो। महारानी कुंती गई, पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें पानी में छोड़ा था और मैं तुमसे भिक्षा मांग रही हूँ, वो 5 बाण दे दो। तो जिस बाण से कर्ण पांडव को मारने वाला था वो बाण भी ले लिए। इतना ही नहीं, जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल था उसे कोई मार नहीं सकता था, कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन इंद्र आए स्वयं ब्राह्मण बनकर अर्जुन की मदद करने के लिए, और कर्ण के पास से कवच और कुंडल कटवा कर ले लिया। कर्ण जानता था कि यह इंद्र है और अर्जुन के लिए आया है, लेकिन दानवीर कर्ण दे दिया दान में। और इसके बाद भी कर्ण के पास एक बाण बचा था, उसका नाम था एक अग्नि, और कर्ण ने स्पेशल वो बाण अर्जुन को मारने के लिए रखा था, इस बाण से अर्जुन को मारूंगा। लेकिन कृष्ण को पता चला कि अभी भी एक बाण ये रखा है कर्ण, और जब तक ये एक बाण रखा है तब तक मेरे भक्त पर संकट है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गटरगज, भीम पुत्र गटरगज को, गटोजगज को बहलाया, भड़काया, और रात्रि युद्ध हुई। रात को गटोजगज ने दुर्योधन की सेना पर हमला किया और सारी सेनाओं को, जब सब सो रही थी, जलाने लगा गटोजगज। तब दुर्योधन उठा और कर्ण को बुलाया कि इसका कुछ करो। तब दुर्योधन ने कहा, वो एक बाण जो छुपा कर रखा है अर्जुन के लिए, कैसे भी करके इसको मारो तुम। कर्ण ने कहा, नहीं, वो तो मैं स्पेशल अर्जुन के लिए रखा हूं, उसे मैं अर्जुन को ही मारूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र अगर तुम इसे नहीं मारे तो हमारी सारी सेना अभी इस रात को ही खत्म हो जाएगी, कल सुबह उस बाण का क्या करोगे। तो वह एकग्नि नाम का बाण कर्ण ने घटोजगत पर चला दिया। लेकिन इतना इतना होने के बाद भी कर्ण अर्जुन का पसीना निकाल देता था। एक दिन की बात, इतना सब दुर्घटना होने के बाद भी कर्ण एक दिन अर्जुन के सामने आया और ऐसा बाण चलाया अर्जुन के पसीने निकल गए, और एक बाण, अमोघ बाण छोड़ा कर्ण ने अर्जुन के गले का निशाना लेकर, जो अर्जुन के गले को लगने ही वाला था। कृष्ण को पता चल गया कि यह बाण अर्जुन के गले को लगने वाला है, तो कृष्ण ने अपने मुट्ठी से जो चला रहे थे घोड़े को, चारों घोड़ों को मारा और घोड़े घुटना टेक दिए, रथ नीचे हुआ और वह अमोघ बाण अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़ गया। कृष्ण ने इस प्रकार, अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कर्ण को परशुराम के द्वारा श्राप नहीं मिला होता, अगर कुंती के द्वारा वो पांच बाण नहीं लिए होते और घटोजगज के द्वारा वो एक अग्नि नहीं लिया होता, तो कर्ण पांडवों को चने की तरह चबा जाता। लेकिन देखिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा, कि जिस पर कृष्ण की कृपा हो, जो कृष्ण का भजन करता हो, कोई इसका बाल भी नहीं तोड़ सकता। आज भी वह कृपा कृष्ण बरसा रहे हैं। गीता में जो श्लोक कहे, नमे भक्ता प्रणश्यति, तभी के लिए भी है और आज के लिए भी। भजन करोगे तो भगवान ख्याल रखेगा, नहीं तो सड़ते रहो और मरो, दुखी हो जाओ और घूमते रहो, भटको। जैसे लावारिश कुत्ता होता है ना, उसे बहुत भय होता है, खाने पीने का टेंशन, कहीं पर किसी भी जगह पर जाता है तो खाता है, और किसी भी गली में चला गया तो बाकी के जो टीम वाले कुत्ते उसे भगा देते हैं, पत्थर मारते हैं, उसमें म्यूनिसिपालिटी वाले आ गए तो पकड़ कर लेकर जाते हैं। लेकिन अगर वो पालतू बन जाए तो उसे कोई हाथ छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो किसी सेठ का है, खाने पीने का टेंशन नहीं है, और जब उसे घूमने जाना है तो बस सुबह थोड़ा रोने लगता है तो उसे घूमने लेकर जाते हैं। अब आप बताइए, जब सुबह वो मालिक उस कुत्ते को लेकर जाता है तो कुत्ता आगे चलता है, मालिक पीछे चलता है, अब मालिक कौन हुआ दो में से? राजा जब चलता है तो पीछे छाता लेकर चलते हैं, तो जब सेठ कुत्ते को लेकर जाता है तो कुत्ता अगर चलता है और मालिक पीछे, तो मालिक तो कुत्ता ही हुआ ना। अब देखिए, गले में पट्टा बांधने से इतना कुछ मिल जाता है, इसलिए सबको गले में कंठी माला बांध लेनी चाहिए। अगर कंठी माला नहीं बांधी, भक्त नहीं बने, तो दर दर भटकोगे और कोई भी पत्थर मारेगा, कोई भी दुखी करेगा, और म्यूनिसिपालिटी वाले अर्थात यमराज आएंगे और गाड़ी में डालकर लेकर जाएंगे। लेकिन दास बन गए, इस परम मालिक के, कृष्ण के नौकर बन गए और बिल्कुल वफादारी की तरह रहे, चार नियम का पालन करते हुए, सोलह माला करते हुए, तब किसी की ताकत है हाथ लगाने की? कोई नहीं हाथ लगाएगा, और मालिक पीछे चलेगा, हमें आगे चलना होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जहां भक्त मम पग धरे वहां धरू मैं हाथ। कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा भक्त पैर रखता है वहां मैं हाथ रखता हूं, कि मेरे भक्त को चोट ना आ जाए, कंकर भी ना लगे, और पीछे पीछे डोलू सदा में, कभी ना छोड़ू साथ, और उस भक्त के पीछे मैं सदा रहता हूं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो उसी कृष्ण की विशुद्ध लीला हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद, आप धैर्य से सुन रहे हैं। तो हम, राधा रानी का विवाह हो गया, और कृष्ण गए हैं पटेरी में और सबको दर्शन दिए, चुंबन किए, और भी कई सारी लीला राधा रानी के विवाह के बाद की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने ग्रंथों में लिखी है। एक दिन की बात, राधा रानी अपने ससुराल से माघ मास में प्रतिदिन यमुना नदी में स्नान करने के बहाने जाती थी। तो राधा रानी की ननन ने सोचा कि जरूर ये राधा, जिसका नाम कुटिला था, तो कुटिला ने सोचा जरूर ये राधा कृष्ण को मिलने के लिए जाती है, इसलिए मैं इसका पीछा करूंगी। तो एक दिन के बाद कुटिला ने राधा रानी का पीछा किया और पीछा करते 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 यमुना के पुलिंद पर उस वन में पहुंची और पता चला राधा रानी और कृष्ण साथ में ही थे वास्तव में। तो पता चला कि कुटिला इस वन में आ रही है। तो कृष्ण ने कहा आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूंगा। तो कृष्ण ने राधा रानी के पति अभिमन्यु का वेश पहन लिया। अब तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अभिमन्यु बन गए और वहीं आजू बाजू में घूमने लगे और कुटिला अभिमन्यु को मिली। वास्तव में वो कृष्ण थे। तो भैया भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वास्तव में कृष्ण थे, वो अभिमन्यु बने थे। तो बहन को कहने लगे, बहना मैंने सुना है राधा यहाँ पर शायद कृष्ण को मिलने के लिए आती है, तो मैं ये देखने के लिए आया हूँ, यह सच बात है या गलत? तो कुटिला ने कहा मैं भी यह देखने के लिए आया हूं। तो अभिमन्यु ने कहा ठीक है, तुम यहां पर देखो, और हाँ, और मैंने सुना है कि वह जो अभिमन्यु है उसने क्षमा कीजिए, हाँ, वो जो कृष्ण है वह अभिमन्यु का ड्रेस पहनकर यहां पर घूम रहा है। पूरा देखे कैसा पूरा घुमा देता है, देते हैं। तो बहना मैं जाता हूँ कंस के वहां, मैं जाता हूँ घर पर और तुम यहाँ पर देख कर आओ। तो अभी मैं तो बेचारा कुछ काम के लिए बाहर गया था और यहाँ पर जैसे ही कृष्ण अभिमन्यु कुटिला के घर पर पहुंचे और थोड़ी देर में कुटिला भी वहां पर आई और जटिला उसकी राधा रानी की सास को कृष्ण अभिमन्यु जो बने थे वह भी आए, कुटिला भी आई और कहने लगी कि कृष्ण कितना छल है, वो अभिमन्यु हमारे भाई और आपके पुत्र का भेष बनाकर घूम रहा है यमुना में। तो जटिला ने कहा कोई डरने की बात नहीं है। कुटिला को कहा तुम राधा को लेकर आओ। तो राधा को अपने रूम में रख लिया और कृष्ण अभिमन्यु जो अपना पुत्र मानती थी, अभिमन्यु तुम अंदर रहो और जटिला और कुटिला हम दोनों यहाँ पर पहरा दे रही है। और यह भी कहा था कि वह कृष्ण अभिमन्यु का ड्रेस बनाकर यहाँ पर आ रहा है राधा के घर की ओर। तो कृष्ण तो अंदर सेफ हो गए। जटिला ने कह दिया ठीक है तुम दोनों आराम करो। अभिमन्यु, कृष्ण अभिमन्यु और राधा को कहा तुम दोनों आराम करो अपने कमरे में, हम संभाल लेगी उस कृष्ण को, उस खल को जो मेरे पुत्र का वेश बनाकर चलता है। तो बेचारा अभिमन्यु अपना काम पटा कर आ रहा था घर पे। तो घर पे आया तो कहने लगा हाँ बिल्कुल हमारे पुत्र जैसा ही ड्रेस बनाकर रखा है। तो कहने लगा क्या ड्रेस बना कर रखा है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। एक खल, अरे खल हम तुझको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहुत पिटाई पिटाई की उस अभिमन्यु की, जो सच अभिमन्यु था उसका, क्या कहते धोखा लेकर और झाड़ू लेकर बहुत पिटा और बहुत मारा और घर से निकाल दिया। और उस पूरा दिन कृष्ण अभिमन्यु वहां पर रहे और बाद में दूसरे दिन जब कृष्ण चले गए तब पता चला यह तो कृष्ण थे। तो इस प्रकार परकीय भाव में बहुत सुंदर सुंदर लीला भगवान कृष्ण की राधा रानी के साथ हो रही थी। लेकिन अब विरह का समय आ चुका है। बोले बोली प्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम ना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कंस को वहां पर कंफर्म हो गया कि देवकी का आठवां पुत्र कृष्ण ही है और वही मेरी मृत्यु का कारण है। तब कंस ने एक युक्ति बनाई कि अपने मोहल्ले में कुत्ता भी शेर होता है, उस कृष्ण को हमारे मोहल्ले में बुलाया जाए और छल कपट करके मार देते हैं। इसलिए कंस ने बहुत सुंदर सुंदर योजना बनाकर रखी, कुबलिया पीढ़ हाथी को रखा, बहुत बड़े द्वार पर हाथी को रखा ताकि कृष्ण उसे कुचल दे, और आगे चार बड़े बड़े पहलवान रखे उसके साथ मल्ल युद्ध में कृष्ण को मार दे, और अंत में तो वह खुद था ही। तो इस प्रकार का योजना बनाकर सोचने लगा कृष्ण को यहाँ पर बुलाए कैसे। तब अक्रूर जी, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे लेकिन रोल कर रहे थे कंस के दूत का, मंत्री का, तो कंस ने कहा अक्रूर आप जाओ और कृष्ण को लेकर आओ। अक्रूर जी की इच्छा नहीं थी कृष्ण को यहाँ पर लाओ, पर अक्रूर जी के मन में यही भावना थी कि कम से कम मुझे कृष्ण के दर्शन तो मिल जाएंगे। और वो भगवान की भगवत्ता को जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और एक कंस फंस ऐसे हजारों कंस आकर चले गए कृष्ण के सामने कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो अक्रूर जी गए कृष्ण को लेने के लिए गोकुल, और गोकुल में कृष्ण को लेकर आ रहे हैं और सारी गोपियां विरह में है, सब लोग कह रहे कृष्ण मत जाओ मत जाओ। तो कृष्ण सबको मना रहे हैं, एक एक गोपी से एक एक करके मिल रहे हैं कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, और बहुत कुछ यहाँ पर बहुत भागवत में वर्णन है लेकिन समय कम है। तो विरह की वेदना, कृष्ण जा रहे हैं इतनी सुंदर लीला करके। देखिए हमने सुना इतना तो, एक घंटा तो कितना आनंद आ गया, जो वास्तव में कृष्ण के साथ रहे होंगे इस प्रकार का आनंद लिया होगा उसे कितना आनंद होगा, और जब कृष्ण जा रहे हैं छोड़कर तब कितना दुख होगा। सारे ब्रजवासी सभी की आंखों में आंसू और सब लोग रोने लगे कृष्ण और बलराम जब वहां से गए। सब लोग अक्रूर जी को गाली देने लगे, इसका नाम तो है अक्रूर लेकिन वास्तव में यह क्रूर है कि यह सारा है हमारे इस कृष्ण और बलराम को लेकर जा रहा है। तो अक्रूर जी सोने के रथ में बिठाकर, यह भी एक कथा है, कृष्ण और बलराम को लेकर गए, और कृष्ण और बलराम मथुरा आए। अब वैसे तो ग्वाल बाल के ड्रेस में थे व्रज के, अब मथुरा आए तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि एक धोबी के पास गए, कहा अच्छे अच्छे कपड़े दो। धोबी ने कहा नहीं कंस हमें मारेगा, तो धोबी को दो तीन मार दिया और कपड़े अच्छे पहन लिए। फिर दर्जी के पास गए, इसको थोड़ा नाप छोटा कर दो हमारे लिए बड़ा है। तो राजाशाही वेश पहनकर द्वार पर एक कुबलिया पीढ़ हाथी था, एक मुष्टिका से हाथी को गिराकर उसका दांत तोड़कर आयुध बनाकर कृष्ण उस सभा में प्रवेश किए। प्रवेश करके चार बड़े बड़े पहाड़ जैसे, काला पहाड़ जैसे बड़े बड़े पहलवान वहां पर खड़े थे, सबको कृष्ण और बलराम ने हरा दिया। अंत में कंस का वध किया, अपने माता और पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से अलग किया, और कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में बांध कर रखा था, तो उग्रसेन को भी अलग करके राजा का सिंहासन दे दिया। और देवकी और वसुदेव ने सोचा हमारा पुत्र 11.5 वर्ष के हो गए हैं और आज तक स्कूल में कख गग भी नहीं सीखा है तो सबसे पहले हमें कार्य यह करना है, इसे पढ़ाना होगा लिखाना होगा। तो कृष्ण और बलराम को उसी मथुरा से उज्जैन, जहां पर सांदीपनि मुनि का आश्रम था, गुरुकुल में भेजे, और कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए गए। और उसी वक्त पोरबंदर से सुदामा जी वहां पर चले हैं, इसकी भी एक कथा है, हम कभी करेंगे। और विद्या प्राप्त करके उज्जैन से भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौटे और जरासंध के साथ युद्ध किए, और इसमें भी ब्राह्मणों ने के कहने पर कृष्ण और बलराम भागे बड़े बड़े पहाड़ से गिरकर। द्वारका में पानी के बीच में अपनी बहुत बड़ी नगरी बनाई जो सोने की थी, और वहां पर रहने लगे। कितनी जल्दी कथा चल रही है, अमित प्रभु ऐसे ही कह रहे थे इस प्रकार कथा कीजिए, लेकिन इसमें आनंद नहीं है जब तक गहराई में नहीं जाएंगे। देखिए हमने आगे छोटी छोटी लीला को आधा आधा घंटा कहा, इसमें कितना आनंद आया, और इतना फास्ट भागने में आनंद नहीं। आजकल के जो वक्ता होते हैं इस प्रकार कथा करते हैं, ये हुआ 7 दिन में भागवत खत्म, लेकिन हमारा 7 दिन में एक ही टॉपिक होता है वो भी खत्म नहीं होता है। ये है कभी भी किसी भी ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि हम सब प्राप्त कर लेंगे, हम जो प्राप्त कर लेंगे उसको गहराई से सर्च करेंगे। खैर समय कम है इसलिए बताना पड़ता है, हमें कुछ अलग टॉपिक पर जाना है। तो द्वारका है, और द्वारका में 16,108 रानियों के साथ भगवान कृष्ण ने ऐश्वर्यमयी विवाह किया, और बहुत सुंदर ऐश्वर्यमयी अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, प्रश्न होगा 16,108 रानियों के साथ विवाह करने के लिए 16,108 कृष्ण कैसे बने। तो कृष्ण भी अपना 16,108 रूप ले लिए और 16,108 रानी और सबके साथ विवाह किए, विवाह किया। अब प्रश्न यहाँ पर बता रहे थे प्रभु जी, प्रश्न होता है कि कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह किए, हम 2-3-4-5 के साथ नहीं कर सकते। कई लोग यह बात को लेकर ऐसा कार्य करते रहते हैं, लेकिन उन मूर्खों को यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण की 16,108 लीगली रानियां थी, जो जैसे फेरा घूमकर में शादी की हुई थी, तो 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल द्वारका में बनाए थे कृष्ण, और 16,108 महल सोने के बने हुए थे, और एक रानी के 10-10 लड़के और एक एक लड़कियां थी, 11 संतान, और ये सभी संतानों के लिए अलग अलग कमरे थे, और ये सारे कमरे सारे महल चिंतामणि और पारसमणि से बने हुए थे, और 16,108 रानियों को स्टव गैस शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चिंतामणि का अर्थ होता है चिंता करने मात्र से प्रकट हो जाए। उस रानियों को जब चाहिए था मुझे पिज्जा चाहिए तो पिज्जा आ जाता था, बनारस की साड़ी चाहिए तो साड़ी आ जाती थी, ये चाहिए नेकलेस चाहिए मंगलसूत्र चाहिए तो आ जाता था, और सारी 16,108 रानियां संतुष्ट थी कृष्ण से, प्रसन्न थी, और कृष्ण अपना विश्वास 16,108 रानियों को प्रसन्न रखते थे। एक रानी को भी ऐसा नहीं था कि आप हमारा ध्यान नहीं रखते, नहीं वो नहीं करते। तो कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया तो 16,108 रानियां प्रसन्न थी। आप एक रानी को भी प्रसन्न रख सकते हो, एक पत्नी को रख सकते हो प्रसन्न, रोज उठकर झगड़ा करते हो, अरे पत्नी की बात छोड़ दीजिए, आप अपने आप को प्रसन्न कर सकते हो, आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो। हम अपने आप को भी संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मन में कई लालसा है, कई भावना है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम हमारी मन की इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकते, दूसरी किसी पत्नी की स्त्री की कैसे करेंगे और 5 स्त्री की कैसे करेंगे, 16,108 की कैसे करेंगे। और मानते हैं कि कृष्ण ने किया हम भी करेंगे, अरे कृष्ण भगवान है वो कुछ भी कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हम भोग्य है, कृष्ण विभू है, हम अणु है। जो ऑफिस होती है ऑफिस का बॉस कभी भी टाइम पर आ सकता है, कभी भी जा सकता है, लेकिन जो वर्कर जो काम करते हैं उसे तो टाइम टू टाइम आना जाना है। तो वर्कर उठकर कहने लगे हमारा बॉस तो कभी भी आता है कभी भी जाता है, मैं भी कभी भी आऊंगा कभी जाऊंगा, उसे निकाल देंगे वहां से दूसरे दिन, चलो भागो यहां से जाओ नरक में। जो इस संसार में रहकर ऐसा कहता है कि कृष्ण ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, तो डायरेक्ट नरक में उसका रिजर्वेशन होता है और कहीं नहीं। तो इस प्रकार की बात एक बार हमारे गुरु महाराज हजारों की संख्या में कह रहे थे तो किसी सिर ने खड़ा होकर कहा कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह क्यों किए। महाराज जी कहे किए तो किए, वो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। नहीं लेकिन 16,108 रानियों के साथ विवाह क्यों किए वो। महाराज जी ने कहा तुम्हें कुछ दिक्कत है, कृष्ण ने अगर 16,108 के साथ किया कि 16,108 के साथ किया तुम्हें कुछ दिक्कत है। तब वो जो स्त्री थी उसका पति खड़ा हो गया, आप ऐसा क्यों कहते हो, आप हमारी पत्नी की ऐसा जवाब क्यों देते हो, कृष्ण ने क्यों ऐसे 16,108 रानी के साथ विवाह किया भगवान होते हुए भी। तो महाराज ने कहा क्या आपकी बहन लगती थी वो 16,108 रानी। अरे वो 16,108 रानियों को प्रॉब्लम नहीं है, वो 16,108 रानियों के पिताओं को प्रॉब्लम नहीं है, भागवत कहने वाले सुखदेव गोस्वामी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, व्यासदेव लिखने वाले व्यासदेव को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको सुनने में क्या प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन जो मूर्ख जीव होते हैं उसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो 16,108 के साथ विवाह किए और कृष्ण पूर्ण संतुष्ट थे। धन की क्या बात की जाए, दशरथ धन देखी धनत, कुबेर जब देखते थे भगवान कृष्ण के धन के सामने तब वो शर्मा जाते थे कि कृष्ण के पास इतना धन तो मेरे पास भी नहीं है, इतना धन इतनी रानियां यह सब कुछ होने के बाद भी कृष्ण दुखी थे। हमारे मन में होता होगा कि ये इतना सब कुछ मिल जाने के बाद कृष्ण तो अब तो सुखी हो गए होंगे, लेकिन कृष्ण दुखी थे। क्यों दुखी थे, क्योंकि वास्तव में वो जिसके साथ प्रेम करते हैं वह उसके साथ नहीं था। और उससे भी ज्यादा दुखी व्रज में रहने वाली गोपियां दुखी थी कि कृष्ण हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, और इसी दुखी में रहकर अपने मुख से प्रतिदिन गाया करती थी। तो हम भी इसी विरह के साथ कुछ गाएंगे, कृपया करके हमारे पीछे गाने का प्रयास कीजिए, करताल दीजिए। जल्दी होना चाहिए। मोरी नींद गई मोहे चैन नहीं गए, शाम खूब जात हो दर्शन दिना भई भावरिया। मोरी नींद गई मोहे चैन नहीं गए, शाम खूब जात हो दर्शन दिना भई भावरिया। गई मोहे चैन नहीं गए, शाम खूब जात हो दर्शन दिना भई भावरिया। मोरी गई मोहे चैन नहीं गए, शाम खूब जात हो दर्शन दिना भई भावरिया। गोपिया कह रही है कि हमारी नींद चली गई, हमारा चैन चला गया, क्योंकि श्याम मथुरा में गोपिया के पास चले गए। वो कहती है कुब जाने कछु काम न कीना, शाम को बस कर लीना। कुब जाने कछु काम न कीना, शाम को बस कर लीना। कुब जाने कछु काम न कीना, शाम को बस कर लीना। कुब जाने शाम को बस कर बिरहा अगन कूचत है सीना, कैसे होगा जीना। 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 जाके कहो कि पास रहो कोई, जाके कहो कि जाके कहो कि पास रहो कोई, जाके कहो कि पास रहो। मोरी पूर मन की आश रे, दर्शन दो मोरे सावरिया। मोरी नींद गई मोरे चैन नहीं गए, शाम को बजा पास हो दर्शन दिना भई भावरिया। मोरी नींद गई चैन नहीं गए, शाम को बजा पास हो। बोले बोले घर किसी पसंद नहीं आई, कीली पराई। 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 गोरी राधा को बिचरा कर काली बजा भाई,
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 ओ प्यारी काली बजा भाई, ओ प्यारी
काली बजा भाई,
नटवर नागर आनंद सागर,
नटवर नागर आनंद सागर,
नटवर नागर आनंद सागर,
नटवर नागर आनंद सागर,
मैं हूँ चरण की दासी हो दर्शन बिना करूँगा मोरे दासदार प्रभु दर्शन आओ श्याम सुंदर घर आओ, दासदार प्रभु दर्शन आओ श्याम सुंदर घर आओ, दासदार प्रभु दर्शन आओ श्याम सुंदर घर आओ, दासदार प्रभु दर्शन पाओ सुने पड़े हैं गो गोपिया नाथ दया कछु लाओ, सुने पड़े हैं गो गोपिया नाथ दया कछु लाओ, कुछ दया लाओ गोपुर गोपिया यहाँ पर सुने पड़े हैं मर रहे हैं,
सुने पड़े हैं गो गोपिया नाथ दया कछु लाओ, सुने पड़े हैं गो गोपिया
नाथ दया कछु लाओ,
प्यारे नाथ दया
गोकुल सुना है मधुवन सुना, गोकुल सुना है मधुवन सुना, गोकुल सुना है मधुवन सुना, गोकुल सुना है सुना है जमुना घाट
Oh, हर मन हर मत लटक लटक मुखत तिर सवर घन घन पट कर मेरे जीजी रंग बरसों मेरे
महीना आ गया है
निहारो ना करी भावरी ગીતા નિહારું ના કરી ભાવરી ઉપદેશ આસમાન કરો હે ઇન્દ્ર લોક મે લોક હલાહલ ખતે લોકે ખતે રવિ બાહર લોક સબ સુખ પ્રાપ્ત રહે લો સબ કહે પાલન હે ફલ લાગત તેરે લીએ તેર પાલન હે ગો તેરે લીએ તેર પાલન હે ગો તેરે લીએ તેર પાલન હે ગો સબ કાળા છુપે ચંદ્ર છુપે નહીં સબ કાળા છુપે ચંદ્ર છુપે નહીં સૂર્ય છુપે નહીં બાદલ છાયો ઘણ ચડ્યો રઘુવંશ છુપે નહીં દાદા છુપે નહીં ચંચલ નારી તુને ધન છુપે નહીં દુર્ગ છુપે નહીં શિપહર છાયો કવિ ગંગ કહે તું ચાહક કર દેના કવિ શાહ કરે અકબર મજબૂત લગા કર યા ભગવા વેશ પહેન કર કિસી કા કર્મ નહીં છૂટતા હૈ વાસ્તવ મેં ભજન કરને કા હૈ તો અંદર સે કરના ચાહીએ કપડે બદલ કર કોઈ ભક્ત નહીં બન સકતા એટલે કહેતે હૈ કભી ગંગ કહે તું ચાહત કર દેના કર્મ તુઝે નહીં કભી તો લગાયો કોઈ ના કર્મ તુઝે નહીં કભી તો લગાયો કોઈ ના કર્મ તુઝે નહીં
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत सुंदर भाव है, भाव का वर्णन करने जाएंगे प्रवचन रुक जाएगा। खैर, शब्द भी कान में आना बहुत सुंदर बात है। तो इस प्रकार मेरी नींद गई मोहे चैन नहीं, गए श्याम कुबजा पास दर्शन दिया मोहे बावरिया। जब से श्याम कुबजा के पास गए हैं, मथुरा में गए हैं, ए सखी मेरी नींद नहीं है, मेरा चैन नहीं है। हे कृष्णा, यहाँ पर आपके सब गैया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, कृपया करके आप वापस आ जाइए। बहुत बहुत कृष्ण को कह रही है, लेकिन कृष्ण के भी मैं तो बहुत सोच रहा हूँ कि कृष्ण को ऐसी क्या मजबूरी होगी कि वो वापस गोकुल नहीं गए। गोकुल से मथुरा से द्वारका चले गए, और द्वारका में जिस प्रकार कृष्ण इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है, दुखी है, ठीक उसी प्रकार दोनों ओर से प्रेम जैसे आग जलती है, वैसे दोनों ओर से प्रेम जल रहा है। भगवान है, स्वयं साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी प्रेम की आग में दोनों जल रहे हैं। इसमें रस है, यही रस प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने इस प्रकार का योग लीला रची थी। तो इतने सुंदर सुंदर ऐश्वर्य के बीच में रहते हुए भी द्वारका में कृष्ण दुखी थे, और गोकुल में सारी गोपियां इत्यादि दुखी थी। और दिन भर कृष्ण की आंख से जैसे ही व्रजवासियों का, गोकुल के भक्तों का याद आती थी, कृष्ण की आंखों से आंसू आ जाते थे, और कृष्ण की आंखों से आंसू सूखते नहीं थे, बस इस प्रकार बैठे बैठे रोते रहते थे। सब रानियां पूछती थी, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। तब कृष्ण से के मुख से इतना ही निकलता था कि बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी छटा में होता रहूं, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, दिन रात चाहे जागृत सपने या सोता रहूं, श्री राधे ही राधे पुकारा करूं, आंसू से मुख को धोता रहूं, ब्रज रानी तुम्हारे वियोग में दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं, दिन रात यूं ही मैं रोता रहूं। हे रानी, हे देवी, हे राधे, आपके वियोग में यहाँ पर मैं दिन रात रो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर द्वारका में भोग में हूँ तो मैं आपके विरह में दुख सुखी हूँ, या मैं भोगेश्वरी भोग रहा हूँ। जितने आप दुखी हो उतना ही मैं दुखी हूँ, और दिन रात मैं रोता रहता हूँ। इस प्रकार से नित्य कृष्ण रोते रहते थे। तो एक दिन रुक्मणी ने पूछ लिया कि प्रभु, आप राधा की विरह में इतने रोते क्यों? ऐसी कौन सी चीज उस व्रजवासियों में, गोकुलवासियों में है कि जिससे आप, जिसके विरह में आप इतने रोते रहते हो? क्या हमें कुछ कमी है? हम यहाँ पर 16,108, आप एक ग्लास पानी मंगाते हो तो 16,108 ग्लास आकर खड़ा रह जाता है। आप एक पैर दबाने के लिए एक रानी को कहते हो तो 16,108 के दो करेंगे मल्टीप्लाई, इतने हाथ आपके सामने आकर खड़े रह जाए। सेवा के लिए तैयार है, तत्पर है, फिर भी प्रभु आपके आंखों में इतना आंसू क्यों? हम में ऐसी कौन सी कमी है? तो प्रभु ने समय आकर, समय लाते ही कुछ ही दिनों में बता दिया कि आपके अंदर कौन सी कमी है। लीला इस प्रकार की थी कि कृष्ण ने ड्रामा किया, नाटक किया, दिखाने के लिए कि हे द्वारका रानी की रानियों, तुम में क्या कमी है। तो कृष्ण एक दिन बहुत ही बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए, बड़े बड़े वैद्य को बुलाया गया, लेकिन ठीक नहीं हुए। तो अंत में कृष्ण ने ही कहा, या नारद मुनि ने कहा, कि अगर कोई भी स्त्री अपने चरण की रज कृष्ण के सिर पर लगाए तो कृष्ण तुरंत ठीक हो जाएंगे। अब ये कार्य कौन कर सकता था? द्वारका में सभी महलों में सभी रानियों को पूछा गया कि कृष्ण को बहुत जोर से बुखार है। रानी भी दुखी आती, लेकिन जहाँ तक पैर का धूल देना है वो तो हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम हमारे चरण की धूल कृष्ण के सिर पर लगाएगी तो हमें हजारों हजारों जन्मों तक नरक में रहना होगा। हमें नरक का भागी नहीं बनना है, हमारी रज कृष्ण को देकर। एक एक करके सबको 16108 रानियों ने यही टके से उत्तर दिया। अंत में रुक्मणी ने भी यह कहा कि हमारे चरण की रज कृष्ण के सिर पर, मुझे नरक में नहीं जाना है। तब कृष्ण ने कहा ठीक है, द्वारका में कोई नहीं दे रहा है तो अब एक वृंदावन में जाकर पूछ लो। तो जब वृंदावन में गए और पता चला कृष्ण को बुखार है, तब सारी गोपियां नाच नाच कर अपने पैर से, राधा रानी और सारी गोपियां पैर से मट्टी उठा उठा कर देने लगी, ये लो कृष्ण के सिर पर लगा देना, ये लो कृष्ण के सिर पर लगा देना। कहा गया कि अगर तुम कृष्ण के सिर पर यह मट्टी लगाओगी तो तुम नरक में जाओगी। तब सारी गोपियां ने एक स्वर से कहा कि अगर कृष्ण इतने दुखी है, उसको सुखी करने के लिए, उसका दर्द बीमारी उतारने के लिए अगर हमें हजार बार करोड़ों बार नरक में जाना हो तो हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण को थोड़ा भी दुख आंच नहीं आनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
यह है गोपियों का प्रेम, यह है परकिया भाव, और द्वारका वासियों का प्रेम स्वकिया भाव है, तत्व है बहुत बड़ा। तो इस प्रकार से गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम था, और कृष्ण इस प्रकार दुखी हालत में रहते थे। तब सारी गोपिया को द्वारका में सारी रानियों को यही प्रश्न था, कृष्ण ने ऐसी कौन सी लीला की है ताकि यह गोपिया कृष्ण के विरह में, और गोपियों ने कृष्ण के साथ ऐसी कौन सी लीला की है ताकि कृष्ण गोपियों के इतने विरह में है, ऐसा क्या किया है ये लोगों ने मिलकर। सारी रानियों को, 16108 रानियों को यह प्रश्न उठा, क्या ये लोगों ने किया है ताकि यह दोनों रह नहीं सकते। तो प्रश्न उठा अब सुने कहां से, हमें कौन बताएगा कि वृंदावन में ये लोग ने क्या क्या किया है। लेकिन एक व्यक्ति था यह सुनाने के लिए, कौन थे? रोहिणी जी, जो बलदेव जी की माता है। जब कृष्ण वृंदावन में थे तब रोहिणी जी भी वहां पर थी और द्वारका में आ गई। तो सारी 16108 रानियां रोहिणी जी के पास गई और प्रार्थना करने लगी, कृपया करके आप तो जानती हो कृष्ण बचपन में क्या लीला किए हैं, तो कृपया करके आप हमें कृष्ण की बचपन की लीला का श्रवण कराइए। तो रोहिणी जी ने कहा मैं श्रवण तो कराऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं आप सबको कहूंगी कृष्ण की बाल लीला, लेकिन ध्यान रहे इस लीला को कृष्ण या बलदेव सुनना नहीं चाहिए। अगर वो सुन लिए तो वापस वृंदावन चले जाएंगे आपको छोड़कर, इसलिए उसको थोड़ा भी सुनने मत देना। तो 16108 रानियों ने कहा ठीक है, हम प्लान बनाती है मीटिंग की, और कहा द्वार पे सुभद्रा को रखते हैं, और सुभद्रा को पहरा देकर वहां पर पहरेदार रखाया गया कि आप कृष्ण और बलराम को अंदर मत आने देना, हम यहाँ पर कथा सुन रही है। तो यहाँ पर तो कथा प्रारंभ हुई, कृष्ण ने इसको मारा, ये किया, ये लीला की सब किया, और वहां पर कृष्ण और बलदेव जी वहां से पसार हो रहे थे। तो देखा कि सब रानियां अंदर, बारी से देखा कि अंदर सब बैठी हैं, तो वह भी अंदर जाने के लिए गए तो सुभद्रा जी ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते। क्यों? तो कहे कि सख्त मनाई है, अंदर इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते। कृष्ण बलराम ने कहा क्या चल रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है? तो कान रखकर देखा तो हमारी ही लीला। तो कृष्ण ने कहा ये तो मुझे सुनना है। तो बलदेव जी ने कहा मुझे भी सुनना है। सुभद्रा तो सुन ही रही थी द्वार पे बैठे बैठे। तो ठीक है आप सुनना है तो सुनो, लेकिन यहाँ बाहर बैठकर सुनो। बहन को मना दिया। अब तीनों, कृष्ण, सुभद्रा और बलदेव जी, तीनों उस दरवाजे के पास बैठे बैठे ये सारी लीला सुन रहे हैं। अब देखिए बहुत ही ऊंची हाई लेवल की बात है, और कृष्ण और बलदेव जी और सुभद्रा ये अपनी ही लीला सुनते सुनते इतना भावाविष्ट हो गए, इतना भावाविष्ट हो गए कि इतना अष्ट सात्विक विकार आकर भावाविष्ट होकर कृष्ण के जितने भी हाथ, जो दोनों हाथ थे वो अंदर जाते गए और पैर भी अंदर चले गए। ठीक उसी प्रकार बलदेव जी के हाथ और पैर अंदर चले गए, सुभद्रा जी के भी, कृष्ण की बहन के भी हाथ पैर अंदर चले गए, क्योंकि इतना भावाविष्ट उस लीला में मग्न हो चुके थे और इस प्रकार का रूप बन गया था। और उसी वक्त वहां से नारद मुनि पसार हो रहे थे। वहां पर नारद मुनि भगवान के मनोवतार पधारे और नारद मुनि ने अद्भुत रूप का दर्शन किया। जीवन में कभी भी ऐसा रूप नारद मुनि ने कल्पना भी नहीं की थी। और नारद मुनि देखकर पहले तो दंडवत किए, प्रणाम किए, और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद नारद मुनि वहां पर खड़े रहे, तब कृष्ण ने कहा, आइए नारद मुनि, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नारद मुनि कहे कि मुझे एक वरदान चाहिए आपसे। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मांग लो, क्या चाहिए आपको? तब नारद मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, अभी यह कथा श्रवण करते वक्त आपका जो रूप बन गया था, क्योंकि सुनते सुनते हाथ और पैर अंदर चले गए थे और आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, तो अभी जो आपका यह रूप था, यह रूप मैंने तो दर्शन किया है, मैं तो संतुष्ट हूं, मैं तो दर्शन कर लिया हूं, लेकिन यह रूप कलयुग में आने वाले जीवों के लिए भी आप प्रकट कीजिए, यही मेरी एक इच्छा है और यही मुझे वर चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, चूंकि तुम हमारे शुद्ध भक्त हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तथास्तु। तो इसी के कारण, नारद मुनि के वरदान के कारण, नारद मुनि के मांगने के कारण, वह जो मूर्ति थी कथा सुनते हुए कृष्ण, सुभद्रा और बलदेव जी की, वही मूर्ति कलयुग में हमें प्राप्त हुई है, जो आपके सामने है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो इस प्रकार कृष्ण अपने लीला सुनकर इस प्रकार का रूप धारण किए, नारद जी ने वर मांगा, और भी कई सारे कारण है जगन्नाथ जी के रूप का। तो कृष्ण द्वारका में अभी लीला सुनने के बाद, अपनी ही लीला सुनने के बाद, तो और भी कृष्ण विरह में आ गए और भी दुखी होने लगे। और एक दिन की बात, कृष्ण जब व्रजवासियों को याद किए और याद करते करते एक दिन मूर्छित होकर गिर गए, अब क्या करे क्या करे, द्वारका में एक प्रश्न उठा, अब कृष्ण के लिए क्या करे, ये मूर्छित होकर गिर गए। तब कहा गया कि ठीक है, नारद मुनि भी वहां पर उपस्थित थे और उद्धव जी भी वहां पर थे, बलदेव जी भी थे और सुभद्रा जी, इतने लोग वहां पर थे। तो नारद मुनि और बलदेव जी ने कहा, उद्धव जी तुम जाओ और वहां पर खबर दो कि कृष्ण वहां पर आ रहा है, कृष्ण को वहां पर लेकर जाएंगे। नारद उद्धव जी ने कहा कि मैं तो जा चुका हूं, मेरी वहां पर बहुत बेइज्जती हुई है, मैं वहां से वापस लौटा हूं, क्योंकि उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। विष्णु नाम प्रवरो मनु, उद्धव जी ही स्वर्ग रिटर्न थे, जैसे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिटर्न होते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी से आते हैं पढ़कर, वैसे उद्धव जी पढ़ने के लिए स्वर्ग में गए थे। पहले इस पृथ्वी पर जितने भी कॉलेज, जितने भी क्लास, सब कुछ खत्म करके स्वर्ग में गए, वहां से पढ़कर आए थे। तो उसको अभिमान आ चुका था उद्धव जी को कि मैं कुछ हूँ, स्वर्ग से स्वर्ग रिटर्न हूँ मैं, हेवन रिटर्न। चलो कहते लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिटर्न, तो मैं तो हेवन रिटर्न हूं, अभिमान आ गया। इसलिए कृष्ण ने उसका अभिमान तोड़ने के लिए, उसको ज्ञान कराने के लिए गोपियों के पास भेजा था। उद्धव जी ने कहा, मैं तो गया था गोपियों के पास, लेकिन मेरा कुछ चला नहीं। और जब मैं गोपियों के पास गया तो गोपियों ने कह दिया कि कीजिए, तुम्हें जो तुम्हारी विद्या है, तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारे पास ही रखो। कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिर श्रृंग नीपे, व्रज में तिहारी कला नैक ही खटे नहीं। बहुत ही सुंदर रसखान एक भक्त कवि हो गए, बहुत ही सुंदर उसने अपनी भाषा में वर्णन किया है। जब उद्धव जी वहां पर गए तब गोपियों ने क्या किया, कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग नीपे, कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग, रज में तिहारी कला मैं कुही खटे नहीं, रज में तिहारी कला कुही खटे नहीं। कहते कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग निपे, व्रज में तिहारी कला नैक ही खटे नहीं। ये जो तुम ज्ञान लेकर आए हो ना उद्धव जी, ये ज्ञान तुम हमको मत सुनाओ। सारी गोपियां मिलकर कहती हैं कि ज्ञान हमें मत सुनाओ, ये ज्ञान तुम बहुत बड़े पर्वत के ऊपर जाओ, कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ और गिरी के ऊपर जाकर वह ज्ञान को फेंको या सुनाओ, जो करना है करो, हमें मत सुनाओ। और इसका दूसरा अर्थ यह भी निकाल सकते हैं, गिरी का अर्थ होता है बड़े बड़े पंडित, एक उपाधि है गिरी, ये विजय गिरी बापू और इत्यादि, तो एक उपाधि है। तो ये जो ज्ञान है तुम बड़े बड़े पंडितों को सुनाओ, हमें यह ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए व्रज में तिहारी कला न कोई खटे नहीं, खटेकार जानते हो, नहीं चलेगी यहाँ पर, बिकेगी नहीं आपकी कला। इसलिए उद्धव जी आप ये जो ज्ञान लेकर आए हो इसका व्रज में कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जय ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी सिंघनी के, प्रकाश गिरी सिंघनी ब्रज में तिहारी कला कोई खटे नहीं, ब्रज में तिहारी कला कहे रत न कर न प्रेम तरु कहे सुखी, कहे रत न कर न प्रेम तरु कहे सुखी, अकीदार पटती न तुलही घटे नहीं, अकीदार पटती न तुलही घटे नहीं। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी गोपियों के भाव में कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि आप जो एक ज्ञान लेकर आए हो इससे हमारी ये जो पेड़ की डालियां है वो सूखेगी नहीं, अर्थात आपसे कुछ होगा नहीं। तो कहे रत्नाकर न प्रेम तरु पहे सुखी, क्योंकि ये जो डालिया है प्रेम की डालिया है और आपके ज्ञान से हमारा प्रेम कम नहीं होने वाला है। इसलिए आप यह ज्ञान पर्वत के जा पर, ये कंटिन्यू ये हर कड़ी में लगेगा कि पर्वत के जा पर फेंको या किसी को दे दो, हमें मत दो। इसलिए कहती है रसना हमारी चारु सात की बनी है उधो, रसना हमारी चारु सात की बनी है उधो, पिपी की दिहाई और लटरती है नहीं, पिपी की दिहाई और रट ही रटे नहीं। रसना हमारी चारु चात की बनी है उदो, पीपी की विहाई और रट ही रटे नहीं। रसना का अर्थ होता है जीवा, जैसे चातक पक्षी ची 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 के अलावा कुछ नहीं जानता है और राह देखता है कब बारिश आए और डायरेक्ट बारिश का मुंह मेरे मुंह में ग्रहण करूं स्वाति नक्षत्र का, ठीक उसी प्रकार है उद्धव हमारी बोली कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे,
हमारी वाणी कृष्ण के सिवा कुछ जानती नहीं है, जैसे चातक पक्षी चींची के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के मेघ के पानी का राह देखकर बैठते हैं, वास्तव में चातक पक्षी साधारण पानी नहीं पीते हैं, स्वाति नक्षत्र में जो आकाश से पानी गिरता है वही पानी पीते हैं, अगर वह पानी न मिले तो मर जाते हैं लेकिन दूसरा कोई पानी नहीं पीते हैं। इसलिए वैसे ही उद्धव हमें कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण की राह देख रहे हैं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं आता है और कृष्ण के बिना हम मर जाएगी, लेकिन कृष्ण के बिना और कोई कला आपके ज्ञान हमें खटेगा नहीं। तो अंत में कहती है लोटी पोटी बात को बवंडर बनावत क्यों, लोटी पोटी बात को बवंडर बनावत क्यों, प्रियते हमारे घन श्याम हटी है नहीं, प्रियते हमारे घन श्याम हटी है। बवंडर, बवंडर का जानते हो जैसे गुजराती में वंटोड़ियों कहते हैं, हवा चलती है तो पूरा हवा सब बखेर जाती है। तो कहते लोटी पोटी बात को बवंडर क्यों बनावत उदो, ये उदो तो ये लोटी